ಕಾಲಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ಬೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. हरे कृष्णा. तो आज का जो विषय है जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे और विषय का नाम है इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता. आप सब कितने लोग भगवद गीता का नाम पहले सुन चुके हैं? लगभग सब सुने हैं. कोई है जो नहीं सुने? सब लोग सुने हैं, सब लोग सुने हैं. तो भगवद गीता का क्या है, कौन बताएंगे? क्या सुने हैं भगवद गीता बारे में, क्या जानते हैं आप सब? कौन बताएंगे? क्या नाम है आपका? निकेश्वर पांडे. आप पहले भी आते थे? अच्छा. हाँ, आप इसी क्लास में हैं? हाँ. भगवद गीता के बारे में क्या जानते हैं आप निकेश्वर? तो
इसमें तो बहुत जैसे पढ़ते हैं हम तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जो निचोड़ बताया जाता है जो मेन पांच चीजें आत्मा परमात्मा कर्म समय आत्मा परमात्मा कर्म समय
काल कर्म प्रकृति
प्रकृति
बहुत अच्छे. और कोई बताएंगे गीता में के बारे में क्या सुना है आपने? क्या नाम है आपका?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा नाम आकाश है. प्रभु जी, भगवद गीता श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को सुनाई थी मानव कल्याण के लिए, जिसके अंदर 700 श्लोक है और 18 अध्याय में वर्णन है इसका. और इसके अंदर स्टार्टिंग के जो अध्याय में है भक्ति के 9 रूप भगवान ने बताए हैं, श्रवण कीर्तन वंदनम पाठ सेवनम अर्चनम और भगवान ने अलग अलग तरह की ऋषि मुनि इन सब का वर्णन किया है कि ये भी मुझे बुद्धि से समझ सकते हैं, लेकिन जो मेरे को जो मतलब बुद्धि से मुझे जान सकते हैं लेकिन जो मुझे समझ सकते हैं वो मेरा भक्ति मुझे समझ सकता है. तो भगवान ने इसका निचोड़ जो है कि भगवान ने यही बताया कि जो भक्ति के द्वारा हम मुझे तुम जान सकते हो, इस जो मायावाद में जो हम फंसे हुए हैं इस बहुत सागर तार उतार सकते हैं और वो सब श्री कृष्ण भगवान ही कर सकते हैं.
थैंक यू.
हरे
हरे कृष्ण. मेरे माइक आवाज कम लग रहा है, आप लोग आवाज आ रहा है? ठीक है, और कौन बताएंगे?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ना विकास गोयल। मतलब जहाँ तक भगवत गीता का जो कहते हैं, मतलब मुझे ये पता है,
अब डर लग रहा होगा बोलने में।
तो प्रभु जी, जैसे कोई भी लाइफ का कोई कहता है कि मुझे इसका आंसर चाहिए किसी भी चीज का, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ का कोई आंसर ऐसा नहीं होगा जो उस भगवत गीता में ना हो। कोई कोई क्वेश्चन पुट करता है, इसका आंसर क्या होगा, ये क्या है, ए टू जेड लाइफ का हर एक क्वेश्चन, और उसका आंसर भगवत गीता में सार पूरा पूरी
लाइफ का। इसको इसको ना आप पीछे रखना चाहिए, और कैसे रख सकते हैं माइक पीछे रखते हैं या वहां पे रख सकते हैं, ऐसे ही बोलिए, माइक तो परेशान कर रहा है, है ना। और कौन बोलना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका? जितेंद्र। हाँ जी जी, जितेंद्र प्रभु। वेरी गुड, माइक से रहता तो सबको सुनाई देता है ना। माइक लगाइए थोड़ा, दीजिए इनको। हाँ बहुत अच्छा बताया आपने।
हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं अंकित, मेरा नाम अंकित कुमार है। तो श्री कृष्ण ने गीता में सिर्फ ये कहा, मतलब कि एक 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 सार है कि जो भी है मैं, इस दुनिया में जो भी है मैं हूँ, सब मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझसे ही खत्म होता है। तो अगर भक्ति करनी है तो मेरी करो, और इस भव सागर से, जन्म जन्म मृत्यु के भव सागर से तुम्हें अगर पार पाना है तो मेरी भक्ति करो।
वेरी गुड, थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पूरे गीता का सार गीता की एक श्लोक से बताना चाहूंगा। उसमें एक श्लोक है कि कर्म में दाति बसते मां फलेषु कदाचन। तो श्री कृष्ण कर्म में दाति बसते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जब फल की इच्छा मत कर। तो श्री कृष्ण अर्जुन को ऐसा वर्णन वहां पे पूरे ऑल ओवर लोगों को एक संदेश देते हुए बताया है कि जो भी एक मनुष्य अपने आप को ऐसा शरीर लेके करता है, वो वाकई वो अपने लिए नहीं करता, वो उसे आत्मा करवाती है। तो उन्होंने उनको उद्देश्य दिया है, उनको रखते हुए पूरे मानव कर्म के लिए,
कर्मणि एव अधिकार ते, कर्मणि एव अधिकार ते मा फलेषु कदाचन, है ना। तो कर्मणि मतलब कर्म में एव ही अधिकार अधिकार है ते, तुम्हारा, है ना, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, है ना, कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन माँ नहीं है फलेषु फल में है कदाचन, कभी भी, मतलब कि कर्म कर सकते हो तुम, लेकिन रिजल्ट तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। ये कहना चाहते हैं कर्म करने का तुमको पूरा अवसर दिया जाएगा, हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि फल जो है वो केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। उसका तो यह व्यक्ति अच्छा सा कर्म करता है लेकिन फल उसके अंतिम कर्म के अनुसार नहीं मिल पाता है। मेहनत काफी किया है, पढ़ाई ही रिजल्ट आ गया कम है ना, क्यों बीच में कुछ गड़बड़ हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है ना। बाकी जाके और विस्तार में अरविंद है बताते हैं ऐसा क्यों होता है ना? तो बाद में बताएंगे कि पांच और भी चार फैक्टर है तुम्हारे अलावा, चार फैक्टर्स और हैं जो कर्म को फल को प्रभावित करते हैं, ओके हैं? और कुछ कोई बताना चाहते हैं? ओके हाँ चलिए लास्ट।
हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता के बारे में जितना मैंने सुना है और लोगों से भी और थोड़ा जाना है जैसे देख कर करके, तो इसमें यह है कि ये प्रैक्टिकली गाइडलाइन है कैसे हमें रहना है। तो जैसे मोह माया के अंदर रहते हैं, तेरा है या मेरा है, तो मेन सोर्स है इसके अंदर, जैसे ट्रेन को चलना है पटपट पे चलना है, तो एक्चुअल भी बताया गया है प्रैक्टिकली कैसे चलना है इसमें। तो अर्जुन को जैसे डाउट हो रहा है कि ये मेरे अपने ही रिश्तेदार हैं, तो उसी मोह माया में जैसे हम लोग बसे हुए हैं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर है जिसको हम लेने के लिए यहाँ पर आपके आशीर्वाद आए हैं।
बहुत अच्छा, थैंक यू, आपसे ने बहुत अच्छा प्रयास किया है ना, प्रशंसनीय है आप सबका प्रयास। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे है ना, इंट्रोड्यूस करेंगे गीता को है ना, इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता, हमारा जो कोर्स है ना वीएलएल टू वैदिक लेवल टू कोर्स, उसका स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो जो कोर्स बुक है उसका पहला अध्याय है ये इंट्रोडक्शन टू भगवद गीता का। इसको दो दो पार्ट में डिस्कस किया जाएगा, आज पार्ट वन होगा और पार्ट टू है ना नेक्स्ट टाइम होगा है ना। जैसा मुझे बताया गया है, मुझे याद आ रहा है ऐसा है ना, तो पार्ट वन है वो, उसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि द भगवद गीता इज द मेन सोर्स बुक ऑन योगा एंड कंसाइज समरी ऑफ इंडियन वैदिक विजडम। तो वैसे तो कई सारे वेद हैं है ना, चार वेद है ना, 18 पुराण, उपनिषद है कई सारे है ना, वेदांत सूत्र है, महाभारत, रामायण, कई सारी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ पाना बड़ा कठिन है, सब सब बहुत विशाल विशाल है, लेकिन ये सब का कंसाइज समरी, तो इंडिया का जो वैदिक विजडम है उसको एक कंसाइज फॉर्म में है ना, छोटा शॉर्ट समरी, सारे वेदों को समरी है ना, वो क्या है, गीता है। अगर मान लीजिए सब नहीं पढ़े केवल गीता ही पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे वैदिक शास्त्र में का एसेंस क्या है, है ना। शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा, शंकराचार्य जी ने गीता की महिमा को वर्णन करते हुए बताते हैं कि सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा गोपाल नंदन, अगर सारी उपनिषद को एक गाय माना जाए, गाय तो उस गाय को दूह रहे हैं कौन, कृष्ण दूह रहे हैं। वैदिक शास्त्र को अगर गाय मान लिया जाए उसको दूह रहे हैं गाय को, कृष्ण ग्वाले नहीं ही दूहेंगे तो कोई आश्चर्य नहीं है, है ना, और किसके लिए तो बछड़ा कौन है, अर्जुन, दूध तो गाय बछड़े के लिए ही देती है ना, तो बछड़ा पीता है उसके बाद एक्सेस हो जाता है तो सबको बांट दिया जाता है कि नहीं, तो हम लोगों को एक्सेस वाला मिल रहा है। तो कहने का गाय का जो दूध होता है गाय का एसेंस है ना, गाय का एसेंस क्या है तो उसी तरह से उपनिषदों का एसेंस क्या है भगवद गीता सारांश, सबका सारांश सार है इसमें गीता में। जब कोई गीता को पढ़ लेता है तो सब समझ जाएगा, इसीलिए सारे आचार्यों ने गीता को महत्व दिया है। शंकराचार्य ने बताया कि एको देव देव की पुत्र देव, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता है ना, सबका पूजा कर दिया जाए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर रोज मान लीजिए डेली अगर हम लोग 100 देवता को भी पूजा करते हैं, 100 देवता डेली, तो साल में कितना हो गया 36,500 है नहीं? और 100 वर्ष मान लीजिए जीवित रहेंगे हम तो कितना हो गया 3,65,000 है ना, 36,000 गुणे 100 36,00,000 36,05,000 है ना, 36,05,000 देवता कवर हो गए, कितने बच गए 32,43,00,000 है 5,50,000 मान लीजिए, 5,10,000 का तो गिनती ही नहीं है, 32 करोड़ फिर भी बच गए आदमी में आगे याद नहीं रहेगा ना कितने लोगों की है, फिर से करना पड़ेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। आप पढ़ाई करके जाते हो पीएचडी, तो पढ़ाई किसके लिए, शरीर के लिए, आत्मा के लिए, पहले इसको डिसाइड कर लेते हैं, तो जिसके लिए भी करें लेकिन अगले जन्म में आएंगे तो फिर से एबीसीडी सीखना पड़ेगा, है कि नहीं, है ना, क्योंकि याद नहीं रहता है ना, काउंटिंग याद नहीं रहेगा, तो ये हम लोग थोड़ा डेविएट हो रहे हैं। तो पॉइंट 36,500 36,00,000 भी अगर कर लिए फिर भी इतने देर तक बच जाएंगे, है ना, तो सबसे पूजा करना संभव ही नहीं है। हम मान लीजिए कुछ का किया कुछ का नहीं किया, तो जिसका किया तो खुश रहेगा, जिसका नहीं किया वो बहुत नाराज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का कोई आप फंक्शन कर रहे हो और कुछ किसी से कुछ रिलेटिव को बुलाइए, कुछ मत बुलाइए, तो जिसको नहीं बुलाएंगे वो क्या करेगा, वो गुस्सा हो जाएगा, आप मेरे भी याद नहीं किया आपने, तो इसी तरह से। तो इसलिए मान लीजिए कि हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना कि रोज 100 देवताओं का पूजा कर सके, लेकिन अगर 100 का करेंगे भी तो सब नहीं कवर होंगे, है कि नहीं, ज्यादा ज्यादा पूरे लाइफ में 150-200 कवर कर पाए, तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि मान लीजिए आपको तो मेरे को कोई बोले कि शंकराचार्य कहते हैं कि अगर मुझे कोई बोले कि एक देवता चुनना है मेरे को, एक ही का, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, एक का पूजा करूंगा, तो कहते कि अगर एक देव एक दो देव एक ही देवता चुनना है तो मैं चुनूंगा किसको, देव की पुत्र को, किसको, देव की पुत्र कृष्ण को, अगर एक ही देवता चुनना है, एक दो देव देव की पुत्र देव, एक ही देवता अगर मेरे को चुनने को कोई कहे तो मैं किसको चुनूंगा, कृष्ण को चुनूंगा, है ना, और एको गीतम देव की पुत्र गीतम, अगर कोई बोले कि एक ही किताब पढ़ने का टाइम है मेरे पास, ज्यादा टाइम नहीं है, एक किताब पढ़ सकता हूँ, बताइए कौन सा पढ़ पढ़ो, तो कहते कि जो गीत गाया देव के पुत्र ने भगवदगीता, भगवदगीता का, और कोई कहता है कि एक मंत्र, एक ही मंत्र, एक ही मंत्र में एक को करना है, एक मंत्र तस्य नामानि एव, अगर एक ही मंत्र करना है तो वो मंत्र करो जिसमें कृष्ण का नाम है, उस कृष्ण के नामों से मिलकर जो मंत्र बना है उसका जप करना चाहिए, और एक कार्य अगर एक ही काम करना है, ज्यादा काम नहीं कर सकता मैं, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, एक ही काम का टाइम है, बस मरना है, एक थोड़ा टाइम बचा उसमें केवल एक काम कर सकता हूँ, तो क्या कीजिए? तस्य देवस्य सेवा, मतलब कृष्ण की सेवा। श्रीपाद शंकराचार्य ने गीता के महात्म में ऐसा लिखा है। मतलब गीता बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसको पढ़ने से 700 श्लोक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना पढ़ने से, मतलब पूरा वैदिक शास्त्र का निचोड़ इसमें प्राप्त हो जाएगा। तो गीता इतना इम्पोर्टेंट किताब है। भगवद गीता इंडिया टाइमलेस क्लासिक ऑन ऑल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, सन ऑफ गॉड। गीता भगवत गीता शब्द का अर्थ क्या है? भगवत मतलब भगवान, गॉड और गीति मतलब सॉन्ग, तो सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान ही गीत गाते हैं इसका मतलब है ना। लेकिन भगवान जब गीत गाते हैं तो समझने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। कई ऋषि मुनि लगते हैं तब जाकर, कभी इतने लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का, फिर भी प्रॉपर समझ नहीं पा रहे हैं ना गीता का। तो सॉन्ग ऑफ गॉड भगवान का ये गीत है। और पुट इनटू रिटन फॉर्म 5000 इयर्स है, पहले भी गीता था। गीता भगवान ने आज से 5000 वर्ष पहले, मतलब 3000 BC, लगभग 3000 BC में, उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये वास्तविक घटना है, इतिहास है, ये कोई बनावटी कहानी नहीं, ये वास्तविक घटना है, ये हुआ था ये आज से 5000 वर्ष पहले है ना। एकादशी के दिन हुआ था, दिसंबर के महीने में युद्ध हुआ था और ठंडी का मौसम था, मुख्यतः एकादशी के दिन शुरू हुआ था युद्ध और 18 दिन तक चला था है ना। तो वो जो युद्ध था आज से 5000 वर्ष पहले हुआ था, वर्ल्ड वॉर था, वो वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। लोग ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 20th century में नहीं हुआ था, वो पहले ही हो गया है ना। लेकिन उसका हिस्टोरियंस को रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए वो मानते नहीं है ना। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो उतना विश्वसनीय नहीं है, इससे मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ सीखने को तो मिल ही नहीं सकता है। इतिहास सब्जेक्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो उसका कुछ ही काम का नहीं है इतिहास ना, क्योंकि देखिए इतिहास शब्द पढ़ाने का क्या क्या उद्देश्य क्या है? जो हिस्ट्री शब्द पढ़ते हैं उसका क्या उद्देश्य है? तो कितने लोग सीखते रहते हैं, बहुत मुश्किल है, कोई सीख नहीं पाता। एक तो पहले क्लियर पता ही नहीं है कि सही है कि नहीं है ना। और कोई तीर निकला खुदाई से कुछ पत्थर है ना, और पत्थर पे कुछ लिखवाया है किसी ने, पता नहीं कौन से भाषा में है, बड़ी मुश्किल से तो पढ़ते हैं है कि नहीं। अब पढ़ने के बाद उसी से कुछ इतिहास जोड़ जोड़ घटा के इधर उधर से मैच करते हैं, चार पांच पत्थर, फिर कुछ मिलता जुलता होता है, उससे कहानी निकालते हैं, ऐसे ही होता है ना। अब पत्थर पे जो कहानी लिखा है कोई जरूरी नहीं कि सत्य होगा। मान लीजिए कि मैं इस देश का राजा हूं, मैं बहुत बदमाश आसान हूं, अब मैं चाहता हूं कि आज से 5000 वर्ष बाद लोग मेरी बड़ाई करेंगे, मैं क्या करूंगा? एक पत्थर पर लिखवा दूंगा कि मैं बहुत बड़े बड़े काम किया, गिरा दूंगा कहीं, अब बाद में इतिहासकार खोद के निकालेंगे। डिपेंड करता है ना कि जो व्यक्ति पत्थर पे लिखा है उसका मोटिव क्या है, ये सब गलत भी हो सकता है। हम तो विश्वास करके चलते हैं कि पत्थर पे जो भी लिखा हुआ है परम सत्य है, सत्य ही होगा, ऐसा मान लेते हैं ना, विप्रीजिंग कर लेते हैं। पर शिलालेख गलत भी हो सकता है, उसपे डाटा जो मिलता है वो प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इसलिए ये इतिहास है ना। अगर आपको सीखना ही है तो किससे व्यक्ति ज्यादा सीखेगा, अशोक के लाइफ से ज्यादा सीखेगा या भगवान राम के लाइफ से ज्यादा सीखेगा? अगर सीखने की जहां तक बात, इतिहास का उद्देश्य है कि हम सीखें, तो सबसे ज्यादा किससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करेगा? श्री राम के जीवन से ज्यादा शिक्षा मिलता है। तो वो इतिहास जो जरूरी था वो पहले से ऋषियों ने दिया है, अलग इतिहास लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और इस इतिहास से देखिए, बड़े बड़े लोग इतिहास में डिग्री लेकर आईएएस अफसर बन जाते हैं और उसके बाद करप्शन करते हैं, इतना सीखा है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये शिक्षा का प्रोसेस सही नहीं है। अगर अगर सीखना है अगर इतिहास से कुछ, तो स्पिरिचुअल प्रोसेस ज्यादा अच्छा है, ठीक नहीं? और इतिहास जो आचार्यों ने ऋषि मुनियों ने लिखा है उसी को पढ़ाना चाहिए आईएएस अफसर को, जहां तक मुझे लग रहा है। और उसी में डिग्री ले, पीएचडी, एमएससी, एमए, बीए जो भी है, तब जाके सही आईएएस अफसर निकलेंगे, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। ऊपर शिक्षा क्योंकि उसमें सीखेंगे कि श्री रामचंद्र जी ने कितना त्याग था उनके अंदर, कितने निस्वार्थ थे, है ना, है? पिता की आज्ञा के पालन के लिए वन में चले गए, कोई केस नहीं किया भरत के ऊपर, कोई केस नहीं किया, कम से कम आधार तो होना चाहिए मेरा। तो वो इतिहास से ज्यादा शिक्षा मिलेगी अगर शिक्षा मिल रही है। तो अंग्रेजों ने उस इतिहास को हटा दिया और नया मैन मेड हिस्ट्री, कॉन्कॉक्टेड ट्विस्टेड हिस्ट्री डाल दिया है ना, उसमें गलत गलत चीजें लिख दी, आर्यन इन्वेशन थ्योरी, आर्य जो है वो बाहर से आए हैं, इंडिया के नहीं है, क्या क्या बकवास लिख दिया उसने, और उसी को पढ़ाया जाता है ना। ये सब धोखा है ना, चीटिंग होता है हमारे साथ। जब भी कोई राजा आएगा ना, वो इतिहास को बदलता है, अपने हिसाब से चेंज करता है। हिस्ट्री बुक इज चेंज एज पर द गवर्नमेंट दे कम, है ना, तो दैट इज नॉट रियल हिस्ट्री। हम लोग को वो चीज पढ़ाया जाता है जो हमें राजा लोग पढ़ाना चाहते हैं, है ना, उनको जो अच्छा लगता है वो डाल देते हैं, अंग्रेजों को जो अच्छा लगता है वो डाल दिया इतिहास, है ना। हिस्ट्री सब्जेक्ट जो था शुरू में, जो अंग्रेजों ने ही शुरू किया था हिस्ट्री, जो आधुनिक हिस्ट्री आप यहाँ पढ़ते हो, इसको लिखने के काम खुदाई उदाई सब अंग्रेजों ने शुरू किया था, बाद में हम अंग्रेजों से आगे निकल गए, है ना। अभी तो इंडिया अंग्रेजों से, अंग्रेजों से भी आगे निकल गया। अगर आज कोई बात करे वैदिक शास्त्र का, तो उसको तो गोली मार देंगे लगता है। आप हमें हमें जो है वो हिंदू बना रहे हैं, है? हाँ, आप ऐसा बोल भी नहीं सकते, लोग उड़ा देंगे आपको, है ना। तो भारत में देश में ही विदेश विदेशी का जीवन जीना पड़ रहा है ना। तो ये इतिहास जो है सही नहीं, तो वास्तविक इतिहास की जो बात है, तो ये बताया जा रहा है कि 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और सारा इतिहास रिकॉर्डेड है ना। भले कोई पत्थर ना मिले लेकिन किताब में लिखा हुआ है सारा, तो पत्थर की क्या जरूरत है, जब पूरा इतना मोटा 1,00,000 श्लोक का किताब ही देखे गए हैं व्यास जी, तो पत्थर क्यों ढूंढ रहे हैं? और जो पढ़ने से पता चलता है उसमें इतना ज्ञान है उस महाभारत में, पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए, राजा का क्या धर्म है, पत्नी स्त्री का क्या धर्म है, सब कुछ बताया है। उसको पढ़ने से शिक्षा प्राप्त होगी, लोग सीखेंगे, जीवन में उतारेंगे। तो उसी समय में गीता भगवान ने अर्जुन को सुनाया था महाभारत के युद्ध में। भगवद गीता इज द लार्जेस्ट सेलिंग मोस्ट वाइडली एडिशन ऑफ द गीता इन द वर्ल्ड। तो जो गीता आपको हम भगवद गीता आपको दिया जाता है इस्कॉन में, उसका नाम है भगवद गीता एज इट इज, एज इट इज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मार्केट में जो कई सारी भगवदगीता अवेलेबल है वो सब क्या है, भगवदगीता एज आई थिंक, क्या गीता एज आई थिंक, गीता एज आई लाइक, है ना, अपना ओपिनियन डालते हैं लोग, है ना, क्या अपना ओपिनियन डाल देते हैं गीता में, गीता कुछ और बोले वो कुछ और बोल रहे हैं, गीता पर फैट लॉस, तो ये सब गीता गीता पर गुड हेल्थ, एक सुनी बंद पूरा पूरा सुनना पड़ेगा, है ना, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, पेशेंस, है ना, ओपिनियन हो सकता है बट कंक्लूजन डिफरेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, ओपिनियन ओपिनियन आप एक चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए अपना एग्जाम्पल दे सकते हो लेकिन जो कंक्लूजन निकलता है वो उसको चेंज नहीं कर सकते, यू अंडरस्टैंड, प्रॉपर ने कंक्लूजन को इंटैक्ट रखा है, है ना, लाइक दैट, है ना, एक्सप्लेन करने के लिए तरीके अलग अलग बदल सकते हैं लेकिन जो निष्कर्ष है कंक्लूजन है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, गीता का कंक्लूजन यही है, लास्ट में सबसे अंतिम श्लोक कृष्ण ने कहा 18वां अध्याय का 65 श्लोक 66 श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशेषी सत्यम के प्रति जाने प्रियोसी में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मासस्य। तो कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार का मुझे प्रार्थना करोगे, है ना, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये कृष्णा कंक्लूड कर देते हैं भगवदगीता का। तो भगवदगीता का कंक्लूजन है कि कृष्णा की पूजा करना, कृष्णा की भक्ति करना, कृष्णा की शरण में जाना, है ना, इसीलिए शंकराचार्य भी बोले ना कि एको देव देव की पुत्र एव, है ना, कृष्णा की शरण में जाना, है ना, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम रे मूढ़ मते, गोविंद का भजन करो अरे मूर्खो, शंकराचार्य बोल रहे हैं ना, ये गीत लिखा है उसने। तो गीता का निष्कर्ष जो कृष्णा ने दिया जो अर्जुन समझे, गीता किसको बोली गई, अर्जुन को बोल रही, जैसे मान लो हम दोनों बात कर रहे हैं, है ना, और जब बात खत्म हो गया और इन्होंने कहा हाँ अब मैं समझ गया, पूछा क्या समझे, बोले बोले यही समझा कि आप ही भगवान हैं और आप जो कहें वही करना हमारा भला है, है ना, अब मान लीजिए हम दोनों की बात को ये सुन रहे हैं, उन्होंने लिख दिया किताब मान लीजिए, है ना, तो ये किताब में क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे ना जो ये समझे हैं, मैं क्या बोला वो सबसे अच्छा कौन बता सकता है जिसने डायरेक्ट सुना ना, है कि नहीं, तो अर्जुन क्या सुन के क्या उत्तर दे रहा है, मैं क्या समझा, लास्ट में अर्जुन बोल रहा है कि मैं क्या समझा आपकी गीता कैसे समझा, तो जैसे अर्जुन समझा गीता को वैसे ही समझना चाहिए ना, दैट इज ऑथेंटिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये सर ना, क्योंकि जिसको डायरेक्ट बोला जा रहा है वो क्या समझ रहा है कि नहीं, वही दैट इज द ओनली बोन ऑफ हाइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गीता, ये सर ना, तो अर्जुन क्या समझा गीता से, अगर मैं कुछ दूसरा समझ रहा हूं अर्जुन जो बोल रहा है वो नहीं समझ रहा हूं, इसका मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत है, तो अर्जुन से हमारी गीता में अर्जुन जो कंक्लूड कर रहे हैं कि मैं क्या समझा गीता को पढ़कर सुनकर वही हमें भी समझना चाहिए, तो कंक्लूजन डिफरेंस नहीं होना चाहिए, प्रभुपाद ने कंक्लूजन को डिफरेंस, अर्जुन ने यही कहा कि हमें समझ गया क्या समझे कि आप ही परम भगवान हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्र परम भगवान हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि आप ही परम भगवान हैं, परम ब्रह्म हैं परम धाम है ना, आप ही देवताओं के स्रोत हैं, सब आप हैं। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको अपना मित्र समझा और आपके साथ हंसी मजाक किया करता था, मुझे पता नहीं था कि आप ही परम ब्रह्म हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, है ना। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति भगवत गीता लिख रहा है और वो लिख रहा है कि नहीं कृष्णा भगवान नहीं है, कृष्णा एक हमारे जैसे ही व्यक्ति थोड़े महान है, तो ये गलत हो गया ना। अर्जुन बोल रहा है कि आप परम ब्रह्म हैं, जो डायरेक्ट गीता सुन रहा है वो बोले परम ब्रह्म है, जो बाद में लिख रहा है बोले नहीं वो भगवान, पर एक भगवान नहीं है वो कोई महान है। यू अंडरस्टैंड, प्रभुपाद की गीता पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। प्रभुपाद क्लियर ही बताते हैं कि कृष्णा ही परम भगवान है और उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड डिफरेंस। तो कंक्लूजन चेंज नहीं किया, कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए बीच में अगर ऐड भी किया जाए कुछ, बट कंक्लूजन इज बीइंग जस्टिफाइड मोर स्ट्रांगली, है ना। तो उस किताब में जितनी सारी बातें होंगी कंक्लूजन को से कनेक्टेड है कि नहीं। जैसे कोई किताब लिख रहा था लास्ट में क्या लिख रहा था, कंक्लूजन लिख रहा था ये सब, तो उस किताब की जो भी बात है वो किसी न किसी रूप से कंक्लूजन को ही प्रूफ कर रही है ये सब। तो इसलिए कंक्लूजन को प्रूफ करना ही किताब का उद्देश्य है और उससे हट के कुछ नहीं। तो प्रभुपाद ने हर जगह इसी कंक्लूजन को स्थापित किया है कि कृष्णा ही परम भगवान है और उनकी भक्ति करना चाहिए। तो ये जो कंक्लूजन देता है वही वास्तव में भगवद गीता एज इट इज, बाकी सब चेंज किया हुआ है ना। और भगवान ने कहा है कि मद भक्त मेरा भक्त बन, है ना, कहते हैं कि मेरा भक्त बन, तो मेरा भक्त मतलब कृष्ण का भक्त बनो, है ना। हाँ
तो उसके बाद में उसके मेन राइटर कौन है जिन्होंने ये गीता को रिटन
किया? व्यास
जी।
तो व्यास जी ने, व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दिया था, आपको शायद पता होगा। तो संजय जो था व्यास जी का शिष्य था, तो उसको व्यास जी ने एक कैमरा दे दिया था, वो कैमरा अलग था जैसे नहीं था, उसकी आंख में सेट किया था जिसे वो खुद भी देख रहा था, रिकॉर्डिंग जो हो रहा था लाइव टेलीकास्ट, और जितना सुंदर था तो उसको सुना भी रहा था लाइव कमेंट्री, और अगर सुना रहा है तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा होगा ना। अगर लाइव कमेंट्री बोला जा सकता है तो उसका रिकॉर्डिंग भी तो बोला होगा ना यूट्यूब पे बाद में, ये सब ना। तो रिकॉर्डिंग व्यास जी मंगा लिए थे अपना बार बार, संजय को डिवाइस दिए थे जिससे वो देख पा रहा था, बोल रहा था, बाद में वो डिवाइस वापस ले लिए व्यास जी, और बाद में उसको ट्रांसक्राइब किया, है कि नहीं। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है समझना, इसको बहुत आसान है ना। तो व्यास जी ने उसको ट्रांसक्राइब किया और फिर से उसको लिखा महाभारत के बीच में, है ना। तो वही गीता है ना। तो व्यास जी ने एज इट इज लिखा था, है ना, और बाद में वो धीरे धीरे, लेकिन व्यास के लिखने से पहले भी गीता था, है ना। तो ये कैसे से कैसे पता चलेगा? तो गीता में ही भगवान बोल रहे हैं, चौथे अध्याय में पहला और दूसरा श्लोक में भगवान बोलते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवाहानमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे भवेत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु सकालेन महता योगो नष्ट परम तप स एवाय मयाचर्यम् योग प्रोक्त पुरातन भक्तो सीमे सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तमम्। तीन श्लोक है इसे बता दें कि ये जो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ, ये ज्ञान आज मैं अर्जुन तुमको बता रहा हूँ, इमम ये ज्ञान विवस्वते योगम, ये विवस्वान को दिया था, सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था लाखों वर्ष पहले, मैंने ही दिया था, है ना। और फिर विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इस प्रकार से ये ज्ञान परंपरा में आ रहा था, एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा से ये ज्ञान आ रहा था राज ऋषियों के द्वारा। लेकिन काले ने ये महता काल के प्रभाव से वो ज्ञान योग नष्ट, वो ज्ञान योग नष्ट हो गया, वो नष्ट हो गया। तो सेवाय मया तेज, उसी ज्ञान को फिर से मैं देने के लिए उसी पुरातन योग प्रोक्तः पुरातन, उसी पुरातन ज्ञान को फिर से प्रदान करने के लिए मैं अवतार लिया हूँ, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो, ये रहस्य उत्तम रहस्य मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। तो ये ज्ञान पहले भी था, अर्जुन को देने से पहले भी ये ज्ञान भगवान ने दिया था, लेकिन समय के प्रभाव से ये ज्ञान लुप्त हो गया, नष्ट हो गया, या उसमें या कहिए भ्रष्ट हो गया, है ना, चेंज हो जाता है ना, लोग अपना मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं थोड़ा सा, ऐसा ही है। हाँ, उस समय लिखा नहीं गया था, क्योंकि पहले जो था ना रिटेन फॉर्म में नहीं होता था वैदिक शास्त्र, वैदिक शास्त्र को जो है पहले श्रुति इसको कहा जाता था, श्रुति मतलब कि गुरु बोलता था और शिष्य उसको स्मरण करके सुन के स्मरण कर लेता था, मेमोरी तेज था पहले लोगों का, है ना, तो श्रुति धर थे लोग, है ना, तो गुरु बोलता था और शिष्य सुनता था, याद आता था, फिर वो अपने शिष्य को बताता था, है ना, इस तरह से परंपरा में ट्रेनिंग होता था और याद आ जाता था। तो जब कलयुग आया तो व्यास जी ने देखा कि कलयुग में लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि मेमोरी हार्ट एक्सटर्नल मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, हार्ट डिसी कमजोर हो जाएगा, इसलिए हार्ट डिसी का जरूरत पड़ेगा ना, हार्ट डिसी या हार्ट डिसी, तो हार्ट डिसी कमजोर हो जाएगा, है ना, ना इसलिए हार्ट डिसी, है ना, एक्सटर्नल हार्ट डिसी जरूरत पड़ेगा, इसलिए एक्सटर्नल हार्ट बाउंड बुक, हार्ट बाउंड हार्ट बुक बनाया, सॉफ्ट बुक से काम नहीं चलेगा, तो हार्ट बुक। तो उसने क्या किया, वेदों को किताब में लिखा लिखा वेदिक शास्त्र को, है ना, तो वेद सृष्टि के प्रारंभ से ही आया, ब्रह्मा को सबसे पहले भगवान कृष्ण ने दिया था, है ना, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे भगवान वासुदेव आपने ही ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया था सृष्टि के प्रारंभ में। पहले ओरिजिनली जो था वो वैदिक शास्त्र था, है ना, उसी को मैं बता रहा हूँ, है ना, तो व्यास जी ने वेद को लिखा, पहले एक ही वेद था जो जिसको यजुर्वेद कहते थे, उसका नाम था यजुर्वेद, एक ही वेद था। तो जब व्यास जी जब लिखने लगे इतना बड़ा हो गया वो, है, तो सोचे कि इतना बड़ा तो लोग देखते ही भाग जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको चार भाग में बांटा था, है ना, ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद यजुर्वेद, है ना, तो चार पार्ट में बांटा और चार शिष्यों को उसका जिम्मेदारी दिया, सौंप दिया, एक को बोला आप इसमें एक्सपर्ट बन जाइए, इसके प्रोफेसर शिष्यों को ट्रेनिंग दिया, एजुकेशन और ट्रेन किया, है ना, तो व्यास जी ने उसको रिकॉर्ड किया, है ना, पेपर पर, और व्यास जी को स्पेशल पावर दिया गया, शक्ति दिया गया था, भगवान के अवतार थे सत्यावेशा अवतार, है ना, जिनको ये स्पेशल पावर था जो चीजों को लिख सकते थे, करने का थी पावर, तभी तो संजय को दिव्य दृष्टि दे दिया है कि नहीं, इतनी इतनी शक्ति थी उनमें, देख कर ही पुत्र जन्म कर देते थे। कैन यू अंडरस्टैंड पावर। जब जब चित्रवीर और विचित्रवीर मर गए और हस्तिनापुर में कोई संतान नहीं था, आगे वंश कैसे बढ़ेगा, तो सत्यवती ने के पुत्र थे व्यास जी, तो सत्यवती ने याद किया अपने पुत्र व्यास को। तो व्यास आए तो उन्होंने अंबा अंबिका जो थी उसको बोला ठीक है उसको मैं दे, 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 मेरे सामने लाओ। तो सामने देख कर है ना अपने योग शक्ति से है ना पुत्र प्रदान किया। तो कितनी शक्ति होगी है ना, आप सोच सकते हैं। और गंधारी भी, गंधारी का भी बाद में जब गंधारी का गर्भ, गंधारी ने अपने गर्भ में हाथ से मारा इस दुख से कि युधिष्ठिर का पहले जन्म हो गया है ना, मेरा बेटा बाद में जन्म हुआ, युधिष्ठिर राजा हो जाएगा, दुख हुआ उसको, तो गर्भ पाप हुआ उसका। तो उस गर्भ को उन्होंने 100 मिट्टी के टुकड़ों में काट रखा और फिर उसने 100 पुत्र को प्रकट किया व्यास जी ने, है ना।
तो
टेस्ट योर बेबी, टेस्ट योर बेबी का कॉन्सेप्ट है ना, व्यास जी ने शुरू किया है ना, गर्भ के बाहर अलग अलग टुकड़ों में बांट कर और उसको फिर से उसको टेस्ट योर बेबी। क्लोनिंग भी कर सकते थे लेकिन ट्राई नहीं किए, जरूरत नहीं पड़ा है ना। तो क्लोनिंग भी होता है, जैसे आप देखो नरसिंह जी, नरसिंह भगवान आधा नर और आधा शेर, दोनों का जीन मिला था तो नरसिंह हो गया, लेकिन मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हैं, कोई नया चीज नहीं बताया जा रहा है करने का अर्थ है ना। तो एनीवे तो व्यास जी के बारे में बताया, तो कैसे वेद और चार वेद लिखे, वेद लिखने के बाद व्यास जी को लगा कि वेद को कोई समझ नहीं पाएगा, कलयुग में लोग योग मंद बुद्धि के होंगे, क्योंकि वेद को समझने के लिए केवल केवल संस्कृत जानने से व्यक्ति वेद नहीं समझ सकता। पहले सोचते मैं संस्कृत पढ़ के वेदों को लिखूंगा, नहीं, वेद को समझने के लिए प्योरिटी चाहिए, क्या प्योरिटी, क्योंकि वेद मंत्र है ना, मंत्र को चैंटिंग करेगा जो प्योरिटी है तो रियलाइज कर पाएगा उसको, है ना। तो इसलिए वेद जो है सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था पहले पहले के युगों में, केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार था। ब्राह्मण कौन, जो अपने को शुद्ध कर चुका है साधना के द्वारा, शुद्ध कर चुका है, जो काम क्रोध लोभ इन चीजों से ऊपर हो चुका है, वही मंत्रों को सिद्ध कर सकता है, मंत्र को सिद्ध किया जाता है, मंत्र को समझा नहीं जाता। आप समझ बात को, मंत्र को क्या किया जाता है, सिद्ध किया जाता है ना, तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा। तो वैदिक मंत्र है, इनको सिद्ध करना पड़ता है, तब हम उसके जो इनर मीनिंग्स हैं उसके पावर से उसके अंदर उसको समझ पाएंगे, है ना। तो वो प्रकट होते हैं हृदय में उसके अंदर। तो व्यास जी सोचे कि कलयुग में तो कोई ब्राह्मण होना बहुत मुश्किल होगा, कोई ब्राह्मण होगा नहीं जल्द जल्द, तो इसलिए उन्होंने फिर कोई समझ नहीं पाएगा वेदों को, तो इसलिए उसको और एक्सप्लेन करने के लिए और किताबें लिखा उन्होंने, है ना। तो फिर उपनिषद लिखा, सब ब्राह्मण संहिता उपनिषद, है ना। फिर सोचे कि उपनिषद को भी नहीं समझ पाएंगे लोग, इतने मंदबुद्धि के होंगे, तो और सिंप्लीफाई करके बहुत ही सरल भाषा में पुराण लिखा, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन लिया, है ना। एग्जाम्पल देके समझाने से जल्दी समझ में आ जाता है कि नहीं, बुद्ध आदमी भी समझ लेता है। उपनिषद जो उसमें एब्सोल्यूट ट्रुथ एक्सप्लेन किया गया है ना, यही ज्ञान है आत्मज्ञान, उसको एक्सप्लेन किया गया। उपनिषद किताबें हैं अलग अलग जो वेदों के अलग अलग ब्रांचेस को विस्तार से एक्सप्लेन करने के लिए, वेदिक मंत्रों को एक्सप्लेन करने के लिए और सरल तरीके से, यानी को होता है ना कि एक चीज लिख दिया गया अब उसको बताने के लिए और एक्सप्लेन कर दिया गया, संस्कृत में सारा संस्कृत में, है ना। तो बाद में फिर व्यास जी ने पुराण लिखे, तो पुराण को भी समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 4 लाख श्लोक है पुराणों में, है ना। उपनिषद में एक तत्व है, फॉर्मूला, है ना, न्यूमेरिकल में क्या अंतर है, समझ रहे हो? तो अप्लाई फिजिक्स, और एक क्या होता है, एक फिजिक्स होता है, एक अप्लाई है ना, एक थ्योरी और एक अप्लाई। तो थ्योरी में केवल थ्योरी होती है, फॉर्मूला इसलिए बोरिंग होता है, लेकिन तो अप्लाई फिजिक्स मतलब कैसे, उपनिषद में केवल प्रिंसिपल्स हैं, क्या है, केवल प्रिंसिपल्स हैं, और पुराणों में क्या है, कथाएं हैं, कहानियां हैं, और कहानियों के माध्यम से प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया गया है। यू अंडरस्टैंड? तो जला आसानी से समझ में आता है ना, कथाओं के माध्यम से, इसीलिए कथा बहुत फेमस है, कथा काफी जगह होता रहता है ना, प्रिंसिपल से एक्सप्लेन करने तो सब पता है, बड़ा मुश्किल है, इतना टफ है ना, आप समझना इसको, प्रिंसिपल्स बहुत गहरे हैं, है ना, उसको समझने के लिए बहुत प्योरिटी चाहिए, सटल ज्ञान, दिमाग बहुत कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए, तब उस चीज को समझा जा सकता है ना। तो इसलिए इस प्रकार से फिर पुराणों को लिखने के बाद फिर लास्ट में महाभारत, सबसे महाभारत सबसे लास्ट में, लेकिन सोचिए इतना बोरिंग चीज होगा, पुराण भी इतना बहुत कम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सस्पेंस हॉरर ये सब डाल के महाभारत बनाया, इसलिए हिट हो गया देखिए महाभारत, है ना, क्योंकि सस्पेंस था, हॉरर था, है ना, और उसमें मैं गीता डाल दिया निचोड़, है ना, मेन चीज सारा सबका सारा ना उसमें डाल दिया, जब सबसे ज्यादा सस्पेंस था कौन जीतेगा, कौन किसको मारेगा, बड़े ध्यान से लोग देखने के लिए तैयार थे, युद्ध शुरू होने वाला है, और उसी समय तैयार कर दिया, मेन चीज डाल दिया गीता का, पहले गीता से नहीं है, फिर देखिए कौन किसको मारेगा, है ना, तो भगवान उसी समय गीता का बोल रहे हैं अर्जुन को, है, तो ये गीता जो है इस तरह से वैदिक शास्त्रों का रचना होता है, गीता क्या है, सारांश है वेदों का, और कुछ लोग कहते हैं गीता तो स्मृति है ना, ये तो महाभारत में है, तो स्मृति है, महाभारत स्मृति है, वेद श्रुति है, श्रुति ज्यादा है, ज्यादा ऑथेंटिक है, है ना, ऐसा नहीं है, श्रुति का मतलब जो भगवान से डायरेक्ट आया है उसको क्या कहते हैं, श्रुति कहते हैं, है ना, जैसे कुरान को श्रुति मानते हैं लोग, कहते हैं ये रिवल्यूशन है ना, रिवल्यूशन है, मोहम्मद को रिवील हुआ है ना, लेकिन मोहम्मद को रिवील हुआ, लेकिन मोहम्मद ने तो कम से कम बोला किसी को ना, किसी ने सुना और रिकॉर्ड किसी और ने किया, मोहम्मद ने तो नहीं लिखा ना, वो तो इलिटरेट थे, वो तो बोलते थे, लिखता कोई और था, है कि नहीं, तो वास्तव में किताब में तो किसी और ने लिखा ना, वो भी मोहम्मद के जाने के 20-30 साल के बाद कुरान लिखा गया है ना, मोहम्मद के समय कुरान नहीं था, अलग अलग जगहों पे पत्तों पे पत्थरों पे कुरान के श्लोक लिखे हुए थे, आयात, बाद में है ना उसको कलेक्ट किया है और फिर जाके किताब बनाया गया है ना, तो ये और वो जो ऑर्डर है कुरान का वो भी जो ऑर्डर जो है वो बाद में डिसाइड हुआ है, कौन चैप्टर पहले हुआ कौन बाद में हुआ, क्योंकि मोहम्मद के मोहम्मद साहब के समय तो अलग अलग था, इसलिए कुरान में लिखा है शुरू की शुरुआत ही होता है क्या, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट ग्रेसियस, तो अल्लाह क्यों लिखेंगे कि ऑन द नेम ऑफ अल्लाह, ये मेरा प्रश्न है, अल्लाह क्यों लिखेंगे ये बात, ऑन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट मर्सीफुल मोस्ट ग्रेसियस, मतलब कोई और लिख रहा है तभी तो लिख रहा है, भगवान के नाम पर मैं लिख रहा हूं, कुरान इज ऑल्सो नॉट श्रुति, इट इज स्मृति, लेटेस्ट एडिशन रिवाइज वर्जन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ऑडियंस, है ना, है ना, तो कहने का अर्थ है कि तो वैदिक शास्त्र जो थे ये तो ये जो गीता है ये भगवान ने ही कहा है, किसने बोला, गीता भगवान वाच, कौन, श्री भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं, तो डायरेक्ट बोल रहे हैं अर्जुन को, वेद भी भगवान ने बोला, किसको, ब्रह्मा को कहा, भगवान कृष्ण ने वेदों को किसको दिया? ब्रह्मा को दिया। वही भगवान गीता दे रहे हैं किसको? अर्जुन को दे रहे हैं। और तो ब्रह्मा को जो वेद दिया भगवान ने, वो उस वेद में भी व्यास जी नहीं लिखा है कि नहीं? तो वेद तो व्यास जी ने लिख रहे थे तो स्मृति हो गया, लेकिन नहीं, क्योंकि भगवान ने जो भी देते हैं वो क्या होता है? श्रुति ही होता है। तो और गीता भी अर्जुन को बोला लेकिन लिखा व्यास ने, तो वो भी क्या है? श्रुति ही है। हालांकि महाभारत के अंदर आता है लेकिन वो क्या है? श्रुति ही माना जाएगा उसको, क्योंकि साक्षात भगवान बोल रहे हैं और भगवान जो भी बोलते हैं वो स्मृति नहीं होता, वो क्या होता है? श्रुति ही होता है वो, है ना? तो कोई लिखे कोई भी, डजंट मैटर, है ना? जैसे कुरान कोई भी लिखे, लेकिन चूंकि भगवान ने रिवील किया इसलिए वो श्रुति माना जाएगा, श्रुति ही है वो, है ना? उसी तरह से गीता भी श्रुति है, है ना? और ये जो वैदिक शास्त्र पहले ये सब शास्त्र थे, और ये शास्त्र जो है वो बदलते हैं, है ना? क्या बदलते हैं? सिचुएशन के हिसाब से, जैसे परिस्थिति अलग है तो शास्त्रों के सिद्धांत बदल जाएंगे, है ना? कम सिचुएशन के अनुसार उसको एडजस्ट करना पड़ता है प्रिंसिपल्स को, है ना? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ऑडियंस डाइजेस्ट नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति है जो 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 2 सिगरेट पी रहा है, एक व्यक्ति 10 सिगरेट पी रहा है, है ना? और दोनों को फेफड़े की बीमारी है, दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास, है ना? तो डॉक्टर बोलता है ठीक है आप दवाई लीजिए, एक को बोलता है आप ऐसा करो आप कितना सिगरेट पीते? बोला 10। बोला आज से आप 5 कर दो, है ना? थोड़ा कम कर दो। दूसरा क्या कितना भी दे दो, बोले छोड़ दो, आज सब छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। दोनों बाहर आए आपस में बोले, पूछे क्या बोला डॉक्टर ने? वो बोला मेरे को बोला आराम से 5 पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे को तुमने तो 2 ही पीता था, मेरे को पूरा मना कर दिया। अरे अरे तेरे को ठीक सही बोला या मेरे को सही बोला? आपस में लड़ रहे हैं। नहीं मेरे को भी डॉक्टर ने बोला वो सही है। बोला नहीं मेरे को बोला वो सही है। दोनों डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आप कैसे डॉक्टर साहब आप दो 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 पक्षपात कर रहे हो, इसको 5 अलाउ कर दिया। मैं भी 5 पी हूँ, और जिसको बोला कि आप 5 पी सकते हो वो जाके सबको प्रचार कर रहा है कि 5 सिगरेट जो नहीं पिएगा वो डॉक्टर के खिलाफ है। जैसे कि मुस्लिम इस्लाम धर्म के लोग बोलते कि जो मांस नहीं खाता है भगवान ने अलाउ किया खाना चाहिए, जो नहीं खाते हैं शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस्लाम में भी मांस अलाउड नहीं है, है ना? गीता में तो नहीं लिखा अहिंसा का, बार बार आता है पढ़ना, है ना? गीता में नहीं लिखा है ना? तो मांस तो मनुष्य खाता था, लेकिन एक होता है मनुष्य खाता था और एक खाना चाहिए, दोनों बहुत अंतर है ना? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं लिखता है,
कहते हैं अगर मुर्गी को नहीं खाएंगे या बकरे को नहीं खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन हमारी पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाएगी, तो आगे खाएगी तो मार्को इको सिस्टम
इको सिस्टम। तो फिर आपकी पॉपुलेशन जब बढ़ रही है तो आपको भी मार दिया जाए।
अपनी लॉजिक तो मुझे भी
समझ नहीं
आता, पर
गलत लॉजिक है ये। मतलब अपनी बात को प्रूफ करने कुछ भी बोल दो, हाँ आतंकवादी इनको मारेंगे, अल्लाह चाहते हैं हम कम कर रहे हैं। तो 2 बच्चे के बच्चा हो गया है ना, इतने दिन से 2 बच्चा हुए, कम हो जाना चाहिए था। मतलब अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी बोल देने का है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और एक एग्जांपल और कुछ लाइक देते हैं कि जैसे एनिमल होता है, फाइव सेंसेस होते हैं।
हम मेरा सिंपल प्रश्न है आपसे, देखो अगर मांस खाना जरूरी है तो मक्का में क्यों मना किया गया है? मक्का में मांस खाना मना किया गया ना कुरान में, क्यों मना किया गया? है खाना तो हर जगह खाना चाहिए, खास कर मक्का में तो अच्छा काम होना चाहिए, है कि नहीं? अगर इतना अच्छा काम है तो मक्का में ही मना कर दिया जाएगा? मक्का तो सारे अच्छा काम वहां जरूर करना चाहिए, हज करने जा रहे हैं, बताइए। तो मक्का में लाइफ साइकिल नहीं है, आप समझ रहे बात को? कितना है ना बेबुनियाद है ये सब, अपनी चीजों को साबित करने के लिए कुछ भी बोलते हैं लोग, है ना? दिस इज थेथरोलॉजी इसको कहते हैं, थेथरोलॉजी। थेथरोलॉजी मतलब अपनी बात को साबित किसी तरह से कर देने का। सामने वाला व्यक्ति अगर मूर्ख मिल जाए तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर मीट ईटिंग अलाउड है तो मक्का में क्यों मना किया गया? कुरान में भी लिखा है कि आप यहाँ जानवर की हत्या नहीं कर सकते मक्का में, और यहाँ तक पेड़ भी नहीं काट सकते, वृक्ष भी नहीं काट सकते मक्का में बिना रीजन, विदाउट प्रॉपर रीजनिंग, यू आर नॉट अलाउड। यहाँ तक मोहम्मद को भी अलाउड नहीं किया गया था मार काट के लिए मक्का में। जब मोहम्मद जी गए थे, मोहम्मद ने आक्रमण किया मक्का पे, तो उनको रोक दिया गया था बाहर ही भगवान की शक्ति से। तो इस तरह से इसलिए मक्का में कोई युद्ध नहीं लड़ा जाएगा फ्यूचर में, ये इस्लाम में ये चीज है। कोई कोई ब्लड नहीं, नो ब्लड कैन बी सेड इन मक्का अकॉर्डिंग टू कुरान, है ना? तो वास्तव में इन्हें डिस्करेज किया गया है कुरान, है ना? लेकिन चूंकि लोग इतने हैबिट्यूटेड थे, है ना, इसलिए डिपेंडेंट थे उस समय, वहां पे अन्न और फल साग सब्जी सब ज्यादा अवेलेबल नहीं था, लोगों का लाइवलीहुड रेगिस्तान एरिया था, लाइवलीहुड इसी पे था, इसलिए प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए बोला गया कि ठीक है तुम लोग लो, लेकिन कम से कम शरण करो, मक्का में मत करो, भगवान जहां है वहां मत करो, दिस वाज द पॉइंट, ना? तो इस तरह से था। और इसको लोग समझते नहीं है, हर धर्म में। अब देखो यहाँ नवरात्रि में मांस नहीं खाते थे लोग, नवरात्रि में केवल 9 दिन नहीं खाएंगे, उसके बाद आराम से खा सकते। व्हाट डज इट मेक सेंस दिस नॉनसेंस? अगर अच्छा है तो हमेशा करना चाहिए ना, ये सब नहीं तो 9 दिन के लिए लाइफ साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है, मक्का में कोई दिक्कत नहीं है, और लॉजिक अपनी बात को। तो वास्तव में भगवान, दैट्स व्हाई अल्लाह इज मर्सीफुल, दयालु, क्योंकि सारे जीवों के प्रति दया होने की, केवल मनुष्यों के ऊपर दया नहीं, केवल मनुष्यों को बचाना चाहते हैं, बाकी लोगों को मार दो, बाकी लोगों के लिए। और अगर अल्लाह अल रहमान है, अल रहमान मतलब सबके लिए मर्सीफुल है, सबके ऊपर दयालु है, तो अगर केवल तो फिर केवल लिखा जाता कि अल्लाह जो है इंसान रहमान है, जानवर रहमान नहीं है। अल रहमान मतलब ऑल मर्सीफुल, इज मर्सीफुल टू एनिमल्स ऑल्सो, इस अल मर्सीफुल का मर्स, अल रहमान का अर्थ है अल रहीम, अल रहमान का अर्थ है कि सबके ऊपर दयालु है, पशुओं के ऊपर भी दयालु है, नहीं तो केवल लिखते इंसान रहीम, मनुष्य रहीम, मनुष्य पे दया करते हैं, केवल मनुष्य को केवल बचाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, है ना? तो ये गलत सिद्धांत है, है ना? नहीं समझ पा रहे मुसलमान, मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं कुरान को, वास्तविक कुरान को, वास्तविक कुरान लॉस्ट होता जा रहा है दिन प्रतिदिन, है ना? तो इसलिए इस्लाम धर्म भ्रष्ट हो रहा है, और उसमें गलत गलत लोग है ना, धीरे धीरे इस्लाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना? रियल टीचिंग कुरान कोई समझ नहीं पा रहा है, बहुत कम मुस्लिम है जो इस बात को जानते हैं, है ना?
जो भी है तो
तो वही बता रहा था ना एग्जाम्पल बताइए, एक तो डॉक्टर ने बोला कि आप 5 सिगरेट कम कर दीजिए, है ना, तो 10 लेता था ना, तो उसके लिए 5 भी बहुत बड़ा एडवांसमेंट है। सबको बोला गया कि कम कर दो, पर उद्देश्य क्या है, खत्म कर देना है, बेस्ट है कि पूरा छोड़ दो। मेन सोर्स बोल रहा है, कुरान ही बोल रहा है मक्का मत खाओ, तो नहीं समझ में नहीं आना चाहिए, बाकी धर्म का तो छोड़िए, इस्लाम में लिखा है मक्का मत खाओ, तो इसका अर्थ क्या है, क्या समझना चाहिए आप बताओ ना, कॉमन सेंस नहीं है। पर्पस इज दैट इट इज डिस्करेज, क्या इसको डिस्करेज किया जा रहा है, लेकिन चूंकि आप मजबूरी है चलो ठीक है, लेकिन बेस्ट है कि आप इसको छोड़ दो, दिस इज व्हाट इज स्पोकन। तो पहले स्कार्सिटी था, आज तो स्कार्सिटी नहीं है ना, मान लो अरब में स्कार्सिटी था, इंडिया के मुस्लिम कितने हैं, ये मेरा प्रश्न है। इंडिया में तो इतना मांग जरूरत नहीं है, मांग तो इतना फल है, साग है, सब्जी है, सब है, अवेलेबल है। और क्या नहीं, कुरान में बताया गया है कि आप जो है वो मजबूरी में ले सकते हैं, अगर आपको आवश्यकता है तो, है ना, इमरजेंसी है, मान लीजिए कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, है ना, मरने से अच्छा है। हाँ, और नहीं, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है ना, उस व्यक्ति की क्या आदत है, क्या स्वभाव है, उसके अनुसार अलाउ किया गया है सारे शास्त्रों में, लेकिन बेस्ट कहा गया है, बेस्ट है कि तुम छोड़ दो, है ना, लाइक दैट, जस्ट लाइक शराब लाइसेंस पे अलाउ किया है, लेकिन बेस्ट क्या है, छोड़ दो, फिर भी गवर्नमेंट क्या करते है, लाइसेंस देती है शराब का, देती है ना, क्यों, क्योंकि जाके अगर बंद कर देंगे तो चोरी चुपके खाएंगे, पैसा भी नहीं आएगा, है कि नहीं। आज देखो गुजरात में शराब बंद कर देते, तो क्या लोग शराब नहीं पीते, पीते हैं स्मगलिंग करके पीते हैं, हैं, लाइसेंस लेके पीते हैं, हैं, और जहां पे बैन हो जाता वहां पर लोग ज्यादा पीते हैं, मुझे लग रहा है चोरी चुपके, अब एक्साइटमेंट हो जाता है तो भगवान जानते हैं कि बदमाश लोग इस तरह से करेंगे, चलो एक रूल के तहत इसको अलाउ किया गया अंडर द सर्टेन रेगुलेशन, बट बेस्ट प्रोसेस क्या है कि इफ यू कैन बिकम फ्री दैट इज बेस्ट, है ना, अगर नहीं फ्री नहीं होते तो कम से कम आप अंडर रेगुलेशन करो, अनरिस्ट्रिक्टेड मत करो, अनरिस्ट्रिक्टेड करने से अच्छा है कि अंडर रेगुलेशन आप करो, महीने में 4 दिन करो, समझ बात, चलो रोज रोज खा रहे हो और जितना मन मन कुछ खा रहे हो कुछ पीट के काट के छोड़ दे रहे हो, कम से कम उससे बच जाओ, है ना, तो और कुरान में जो प्रोसेस बताया गया हलाल, है ना, मांस खाने का प्रोसेस हलाल प्रोसेस है, कैसे काटना है वो सब बताया गया है ना, हदीस में बताया गया है ना, उसने बताया कि आपको जानवर की आंखों में देखते हुए काटना है, है ना, जब आप काट रहे हैं तो आपको खुद ही काटना है, अगर आप खाना चाहते हो तो, ये प्रोसेस है, कितने मुसलमान इसको फॉलो करते हैं, खुद नहीं काटा जाए, और काटते समय उसकी आंख में देखना है, आंख में क्यों देखना है, ताकि आप फील कर सको कि ये भी आप ही जैसा इंसान है, कितना कष्ट हो रहा है इसको, आप अपने जीवन के लिए इसको इतना कष्ट दे रहे हो, देखोगे कब ना, तो प्रोसेस को फॉलो कहाँ कर रहा है भाई, प्रोसेस को फॉलो करे तो छोड़ देगा, लेकिन कर नहीं रहा है ना, और वैदिक शास्त्र में भी बताया गया है बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन वो बलि में बताया गया प्रोसेस है कि बलि चढ़ाते समय आपको एक मंत्र बोलना है, मंत्र बोलता है एक अर्थ है कि मैं आपको इस जन्म में काट रहा हूँ, अगले जन्म में आप मेरे को काट सकते हैं, उसका अर्थ ये यार मैं मंत्र का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, तो अगर वो मंत्र पढ़ते हुए समझते हुए कोई करे तो करेगा, वो तो छोड़ देगा यार, क्यों टेंशन, अगले जन्म में प्रॉब्लम होगा, है कि नहीं, तो ये सब ट्रिक है, क्या है ट्रिक है, ताकि व्यक्ति धीरे धीरे छोड़ दे, बहुत एडिक्टेड है अगर किसी चीज के लिए तो धीरे धीरे उसको छोड़े, एनीवे तो गीता जो है वो तो सारे धर्म जो है वो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार चीजों को एडजस्ट करते हैं प्रिंसिपल्स को, है ना। जैसे डॉक्टर ने एडजस्ट किया है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए वो बोल देता पूरा छोड़ दो, सिगरेट बिल्कुल मत पियो, वो तो छोड़ पाता नहीं है और डॉक्टर के पास भी नहीं आएगा अगली बार, क्यों? क्योंकि जानेगा डॉक्टर पूछेगा छोड़ा क्या, नहीं छोड़ा तो डांटेगा, तो इसलिए क्या करते हैं उसको बोलते चलो धीरे धीरे, चलो पांच, फिर पांच पे आ जाएगा, फिर चार कर दो, चलो फिर तीन कर दो, फिर दो, इस तरह से ग्रेजुअली एक व्यक्ति रियलाइज करेगा, डेवलप करेगा अपने आप को।
नॉन वेजिटेरियन भी निर्जीव, इसमें जीवात्मा नहीं है, जो बैक्टीरिया है जीवात्मा, तो जो कर्ड होता है इफ वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप दीज आर द गुड बैक्टीरिया।
हाँ, वो भी लाइव है, वो भी लाइव है, टमाटर में भी लाइव है,
वी आर ईटिंग दैट, सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ,
नो दैट इज नॉट सीन। आसानी से समझ पाएंगे, जस्ट लाइक कोई सामान आप खरीदने जाते हैं दुकान पे, है ना, तो हर सामान पे एक लेवल लगा रहता है एमआरपी, है ना, एमआरपी, एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो अगर कोई एक्चुअल 10 रुपए का होगा तो एमआरपी 15 रुपया, मतलब 5 रुपए बेमानी अलाउड हो, यू अंडरस्टैंड, 5 रुपीज चीटिंग इज अलाउड, वो सीन नहीं है, क्योंकि जब 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 कोई बिजनेस करेगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो बिजनेस क्यों करेगा, है ना, जिएगा कैसे, हो देखने का फॉर सर्वाइवल दिस मच सीन इज अलाउड बाय गवर्नमेंट, यू अंडरस्टैंड। तो कोई 5 रुपये बेमानी करो या 100, अपना लेवल लगा दो, 10 रुपया के बदले 15 रुपये बदले अपना 1500 रुपये का लेवल लगा दिया, है ना। अब कंज्यूमर कोर्ट में ले गया उसको, आपने 15 रुपये को 1500 के बदले बोला 5 रुपये आपने बेमानी अलाउ किया, मैंने तो 1500 बेमानी कर लिया, दोनों बेमानी है, आप टेंशन से ले रहे हैं, नो एक बेमानी अलाउड है आपके सर्वाइवल के लिए, यू अंडरस्टैंड, दैट मच इज अलाउड बाय गॉड, यू अंडरस्टैंड। वो भी भगवान को भोग लगा के अर्पित करके ऑन द नेम ऑफ अल्लाह, क्या ऑन द नेम ऑफ अल्लाह, उसको भगवान के नाम पे उसको बलि के रूप में लेना है, सेक्रीफाइस के रूप में लेना है, यू अंडरस्टैंड। और लेकिन वो भी पाप है, वो भी क्या है, पाप है, लेकिन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड दैट मच इज नीडेड, देयरफॉर भगवान ने ना क्षमा किया है, लेकिन क्या नहीं कहा अब इतना अलाउ है तो अपना भी लेवल लगा रहे हैं, है ना, तो दिस इज लाइक आई, समझ में आ रहा है, तो कुछ तो खाना पड़ेगा ना, जीवो जीवो से जीवन, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, लेकिन उसमें भी देखना है। अब मान लीजिए टमाटर, टमाटर में लाइफ है उसको खाना, अब मान लीजिए हम अपनी माँ को ही काट के खा जाए, दोनों लाइफ है तो क्या दोनों बराबर है, बताइए, दोनों एक तरह से दोनों क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक एक टमाटर काटोगे तो पुलिस नहीं पकड़ेगी, मां को काटेंगे तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, पुलिस के पहले घर वाले ही आपको जान से है कि नहीं, तो कौन आप मर जाइए खुद ही, फास्टिंग कीजिए, है कि नहीं, मरिए तो बेस्ट है कि आप मर जाओ, तो इसीलिए मैं आपको बताया कि प्रैक्टिकलिटी को देखते भगवान ने कुछ मिनिमम सीन अलाउड किया है, यू अंडरस्टैंड, कि मिनिमम यू डू, जितना मिनिमम, बेयर मिनिमम जो सर्वाइवल के लिए आपको जरूरी है उतना पाप नहीं माना जाएगा, भगवान ने ऐसा कहा, यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से
इट इज रिटन इन द गीता, मिनिमम अमाउंट और समथिंग लाइक इतना और सर्वाइवल अधिकृत
बताते ना पत्रम पुष्पम फलम स्वयं है ना, पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, ये सब भगवान को अर्पित कर रहे हैं है ना, मांस नहीं, गीता में भगवान ने मांस नहीं बताया, तीन प्रकार के भोजन बताया है गीता के, सतोगुणी तमोगुणी और रजोगुणी, तमोगुणी में भी मांस नहीं है, आप समझ बात को, मांस जो है तमोगुणी सबसे लो क्वालिटी का भोजन बताया मनुष्य के लिए, लेकिन उसमें भी मांस का चर्चा नहीं किया है, मतलब मांस मनुष्य का भोजन है ही नहीं करने का थी।
प्रभु जी एक मूवी भी चैतन्य महाप्रभु करके ठीक, उसमें उनका पूरा कहानी दिखाया चैतन्य भगवान का बचपन का कैसे कृष्ण का, तो जब वो कृष्ण भक्ति में थे तो क्या हुआ कि कृष्ण तो हर चीज में मौजूद है ठीक, तो वो जब जब खाने लास्ट में क्या हुआ जब वो खाने बैठ रहे थे तो उन्हें चावल दाल सब्जी यहाँ तक कि पत्थर में कृष्ण जी नजर आ गए, तो उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, मतलब कि एकदम मरने के स्थिति में आ गए, तब उन्होंने फिर एक ज्ञान दिया, मतलब कि फिर उन्होंने कहीं जाना था उन्हें, तो उस तरह से हुआ क्योंकि अगर वो भोजन छोड़ देते तो फिर वो भक्ति नहीं कर पाते।
नहीं ऐसा सब घटना मैंने नहीं सुना है कहीं, चैतन्य महाप्रभु के किसी और साथ हुआ होगा है ना, चैतन्य महाप्रभु के ऐसा घटना नहीं हुआ है, लेकिन कृष्ण हर जगह है ना, और कृष्ण हर जगह रहेंगे आपके खाने के बाद, कृष्ण अमर है वो मरते नहीं है इसको समझना,
ऐसा प्रतीत हो रहा था हर चीज में कृष्ण है,
कृष्ण हर चीज में है का अर्थ ये है, देखिए इसलिए समझना चाहिए कृष्ण हर चीज में है खाने का अर्थ ये है कि उनकी शक्ति हर जगह विद्यमान है, ये यानी कि शक्ति के माध्यम से हर जगह कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को है ना, लग जाएगा है ना, उस दृष्टि में हर जगह है, इस तरह से समझना चाहिए। हाँ और जो भी हो एनीवे मैंने तो नहीं सुना है ऐसा चैतन्य महाप्रभु की लीला में कोई, मैं तो सुना कि प्रसाद पाते थे महाप्रभु, भोग लगा कर देने पर प्रसाद पाते थे है ना, हर चीज भगवान से संबंधित है ये कहने का अर्थ है ना, भगवान तो गीता में मैं हर जगह हूँ हर चीज के अंदर हूँ पर हर चीज के अंदर नहीं है, दोनों बोल रहे हैं, किताब पढ़ी है जो माम सर्व पश्यति सर्वम च मई पश्यति, भगवान कहते हैं जो मुझे हर जगह देखता है और हर चीज को मेरे अंदर देखता है, मतलब सब 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 जगह मैं हूँ और सब मेरे अंदर है, ये इसका अर्थ क्या होगा, यू अंडरस्टैंड, इसका अर्थ है कि मैं सब जगह अपनी शक्तियों के माध्यम से है ना, सब चीज मेरे अंदर है ना, मेरे अंदर के अंदर मेरी शक्तियां हर जगह पे आप हैं, जिसके द्वारा मैं जैसे नरेंद्र मोदी हर जगह है कि नहीं, मतलब जहां भी चाहे रह कंट्रोल कर सकता है इमीडिएटली है ना, अपने मामा शक्ति है उसके पास, इस तरह से उस तरह से ही एवरीवेयर है कि नहीं, बट एट द सेम टाइम ही इज नॉट एवरीवेयर, दिस इज हाउ है ना, तो भगवान की शक्ति इतनी है, जैसे मान लीजिए भगवान यहाँ बैठे हैं लेकिन मेरे इनको उनको जाने बाहर बाहर हाथ अब उठ के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें हाथ फैलाएंगे फटाक से जाकर बैठा देंगे, हाथ क्या है उनका शक्ति है, शक्ति को उनको पहुंचा तो सिर्फ बाई हिज पावर ही कैन एक्सटेंड हिज हैंड्स एनीवेयर, ये है इसका हिज पावर सप्लाई है ना, हमारा पावर है हम मैं तो यहाँ बैठा हूँ लेकिन मैं यहाँ भी हूँ, ग्लास ग्लास के पास भी हूँ ना, ये सर न लेकिन मैं वहां नहीं हूँ, है कि नहीं, लेकिन अगर कोई पूछे आप कहाँ हैं तो मैं बोलूंगा ना कि मैं इस रूम में बैठा हूँ, आप बोलोगे तो प्रभु जी आप मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसी रूम में हूँ, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हो है ना, लग जाए तो इसी तरह से भगवान की दृष्टि में वो हर जगह अवेलेबल उपलब्ध है अपनी शक्तियों के माध्यम से, इस तरह से इसको समझना चाहिए है ना। ओके ओके तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवद गीता इज द लार्जेस्ट सेलिंग मोस्ट वाइडली एडिशन ऑफ गीता इन द वर्ल्ड जो जो इस्कॉन की जो गीता है विश्व में सबसे ज्यादा गीता जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ये वाली गीता डिस्ट्रीब्यूट हुई है और इस गीता ने सबसे ज्यादा लोगों के लाइफ को चेंज किया है तो इसमें कुछ स्पेशल है ना तो इतनी स्पेशल है कि सरकार परेशान हो जाती है ना रूस की सरकार परेशान हो गई है ना बैन करना चाहती थी इस गीता को है ना और किसी गीता से प्रॉब्लम नहीं था इस गीता से प्रॉब्लम था क्यों कई सारे क्रिश्चियंस जो है वो गीता को अपना रहे थे यहाँ तक इतने क्रिश्चियन जो है वो पढ़ने लगे गीता और वैदिक लाइफस्टाइल को अपनाने लगे कि सरकार हिल गई तो इस गीता में काफी शक्ति है कौन गीता कितनी भी पवित्र है उससे पता चलेगा कि कितना प्रभाव डालती है व्यक्ति के पढ़ने वाले के ऊपर उसके अंदर कितना परिवर्तन ला पाता है वो गीता ये सब है ना उससे पता चलता है कि कितना पावर है उसके अंदर इस गीता को जिसने भी पढ़ा है उसके जीवन में परिवर्तन आ गया चाहे वो हिंदू हो चाहे कोई दूसरा हो क्रिश्चियन हो दूसरे धर्म के लोग भी पढ़ते हैं उसको इसमें अगर उनको मुसलमान पढ़े तो उनमें उसमें इस गीता में उनको कुरान दिखाई देगा हाँ गीता में कुरान दिखाई देगा बिल्कुल कुरान जैसा लगेगा कि कुरान ही है ऐसे ऐसे श्लोक बिल्कुल मैच कर जाएंगे कुरान से एकदम लगेगा वही श्लोक कुरान में मिलेगा आपको गीता में हाँ स्रोत तो ये ही है ना स्रोत तो भगवान है ना भगवान है स्रोत है ना अब भगवान जो है अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग एडजस्ट करके उसी में एडजस्टमेंट करके सिचुएशन के अनुसार ज्ञान को बांटते हैं जैसे डॉक्टर एडजस्ट किया है ना एक को बोला पांच कर लो एक को बोला छोड़ दो है कि नहीं तो उद्देश्य क्या था दोनों का फायदा आगे बढ़े दोनों है ना तो सबके लिए लॉ एक नहीं होना चाहिए है ना क्यों सबका स्थिति अलग अलग है लेकिन सबका स्थिति अलग अलग है कोई 10 किलो लोड उठा सकता है कोई 2 केजी उठा पाएगा और 2 केजी वाला को 10 केजी डाल दो क्या होगा तो मर ही जाएगा बेचारा है कि नहीं तो भगवान देखते हैं कि व्यक्ति का कितना कैपेसिटी है उसी के अनुसार उसको नियम पालन करने के लिए देते हैं जैसे कोई व्यक्ति है टू मच एडिक्टेड टू सेक्स लाइफ अगर उसको बोल दिया जाए ब्रह्मचारी बन गए तो ब्रह्मचारी अगर बन भी जाएगा तो क्या करेगा वो ब्रह्मचारी बन के एडल्ट्री करेगा वो संत बनकर एडल्ट्री करेगा है कि नहीं तो इससे बढ़िया उसके लिए ऑप्शन दूसरा दे दीजिए है कि नहीं चलो शादी कर लो कम से कम एक स्त्री के साथ रहो इससे भी यही बहुत बड़ा एडवांस मिले अगर कोई व्यक्ति इतना कंट्रोल करते रहे बहुत बड़ा एडवांसमेंट है आसान नहीं है इसलिए कुरान में 4 अलाउड है क्योंकि वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ा एक में दिक्कत हो जाएगा है ना इसलिए बोले चलो 3-4 वेराइटी दे देते हैं आपको है ना लेकिन डिपेंड करता है ना व्यक्ति के ऊपर मेन प्रिंसिपल एब्सोल्यूट प्रिंसिपल क्या है बेटर इफ यू स्टॉप ऑल टूगेदर एंड फुली फोकस ऑन गॉड दैट इज एब्सोल्यूट बट बिकॉज यू कैन नॉट डू दैट देयरफॉर एटलीस्ट यू डू दिस मच कम से कम इतना करो है ना कम से कम जैसे एब्सोल्यूट क्या है क्या पीएचडी करो बेस्ट है ठीक है पीएचडी नहीं कर सकते तो ठीक है प्लस टू कर दो कई लोग मैट्रिक में ही ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि नहीं यू अंडरस्टैंड समझ आ रहा है यस लाइक दैट कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग ब्लाइंड अंकल इज बेटर देन नो अंकल है कि नहीं एटलीस्ट अंकल इज देयर किसके साथ
इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी इनको बैटरी तक दिया दूसरे को बैठ दिया
भगवान क्यों दिया, वो ड्रॉप आउट हुआ, भगवान ने तो बना रखा है, सब बना रखा है, भगवान के मन पर न करे, आप फेल हो गए, भगवान पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, भगवान उनको ब्लेम कर रहे हैं। इसी
पहले के जो राजा होते थे उनकी तो काफी सारी मनाइयां राजा होती थी, वो सिद्धांत कभी तो नहीं करते थे, राजा जो होते थे पहले
प्रिंसिपल राजा लोग सब मैरिज करते सेक्स के लिए नहीं, दे नॉट मैरिंग फॉर सेक्स पर्पज, दे मैरिंग पर्पज टू डेवलप रिलेशन, है ना। जिस राजा के पारिवारिक संबंध हो जाता था तो संबंध राजा राजा के बीच में संबंध पक्का होता, लड़ाई नहीं होती थी, कहने का मित्रता के लिए मैरिज किया करते थे क्षत्रिय के साथ, तो पर्पज वॉज नॉट सेक्स, फोकस वॉज नॉट सेक्स लाइफ, है ना। सो इट वॉज प्योरली पोलिटिकल रीजन मोस्ट ऑफ द केसेस, राजा का किया जा सकता है, राजा है आप, राजा कर सकता है ना, क्षत्रिय के लिए अलाउड था। और दूसरा कारण था कि राजा लोगों के पास सामर्थ्य था, वो उनको मेंटेन करके रखते थे, आप तो एक शादी करो हालत खराब हो जाएगा, लेकिन तो एक एक केवल मैरिज ही नहीं बल्कि खुशी, तो बेसिकली क्षत्रिय करते थे पॉलिटिकल रीजन से ज्यादा। भगवान श्री रामचंद्र ने एक शादी किया है ना, और उसी को उन्होंने स्थापित किया सिद्धांत, है ना, कि दिस इज बेस्ट, अगर आप इस तरह से रह सको तो। हाँ, तो भगवान भगवान के ऐश्वर्य अनंत है ना, भगवान जो है वो कृष्ण के रूप में दिखा रहे हैं कि भगवान का कोई सीमा नहीं है, है ना। भगवान भगवान वो तो नेचुरली अट्रैक्टेड अट्रैक्शन था ना, भगवान इतने सुंदर है, सारा संसार आकर्षित है उनसे। कोई अंतर नहीं है ना, ठीक है। जब आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो व्यक्ति नरेंद्र मोदी की बात करते हैं या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, डज इट मेक एनी सेंस दिस क्वेश्चन। व्यक्ति इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नरेंद्र मोदी, बिफोर प्राइम मिनिस्टर वाज नरेंद्र मोदी, बट ही हैड द एबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो वेन ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर, दैट टाइम ऑल्सो ही वॉज आई मीन द एबिलिटी ओनली मैनिफेस्टेड एट सर्टेन स्टेज ऑफ टाइम, यस ऑर नो। तो इट डज मेक एनी सेंस, तो भगवान देवी नंदन ही है, कृष्ण ही है जो ही लिमिटलेस है, है ना, वही लिमिटलेस है, एनर्जी है, वो उनकी एनर्जी है जो लिमिटलेस है। एक होता है व्यक्ति और एक क्या होता है उसका एनर्जी शक्ति, तो शक्ति जो है वो अनलिमिटेड है भगवान की, है ना। और भगवान एक पर्सन है, उनका एक पर्सनैलिटी है, ना लाइक दैट, तो इस तरह से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे ये जो गीता है, किस कौन की जो गीता ये कितनी प्रभावशाली, इसको पढ़ने से न व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होता है। और भगवद गीता इज ऑल्सो रिसिटेड बाई साइंटिस्ट, है ना, लाइक आइंस्टीन, ओपेनहाइमर, हु कोटेड फ्रॉम भगवद गीता 11th चैप्टर एंड फर्स्ट एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑफ, ना फिलोसफर्स लाइक हेनरी डेविड थोरू, पॉलिटिशियंस लाइक डॉक्टर राधाकृष्णन, गांधी, अब्दुल कलाम, रिलीजनिस्ट लाइक शंकर, रामानुजन, मध्वाचार्य, प्रोफेसर, थियोलॉजियन, दे ऑल्सो एप्रिशिएट गीता, गीता का टीचिंग्स को काफी वाइडली एक्सेप्ट किया जाता है, इसके प्रिंसिपल्स को, है ना। महात्मा गांधी, आइंस्टीन, आइंस्टीन ने कहा व्हेन आई रीड गीता and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. Gandhi ji kehte hain ki when doubts haunt me, when disappointments stare me in the face, when I see not one ray of hope on the horizon, I turn to the Gita and I find myself smiling amidst overwhelming sorrows. Those who meditate on the Gita will derive fresh meanings and joy from it every day. तो गीता शोले से गांधी जी के लिए है ना। आइंस्टीन भी कहते हैं कि जब मैं गीता पढ़ता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि भगवान ने कैसे इन वर्ग को बनाया, कैसे ब्रह्मांड को बनाया भगवान ने। गीता में बताया है कालो अस्मि, मैं काल हूं, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो जब जब एटम बम बनाया था आइंस्टीन ने, और जब पहला एटम बम गिरा था तो काल के रूप में नष्ट किया था भगवान ने। तो ये सारे लोग जिन्होंने काफी अप्रिसिएट किया, गीता पढ़ते थे लोग, है ना। तो गीता का बैकग्राउंड थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्या स्थिति था कि गीता बोलना पड़ा भगवान अर्जुन को, सुनाना पड़ा, है ना। थोड़ा सा इसको चर्चा करेंगे। तो जहां तक हम जैसा हम जानते हैं कि पांडु की मृत्यु हुई, पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था टेम्पररी टाइम देने के लिए, है ना। धृतराष्ट्र को राजा बनाया, क्योंकि धृतराष्ट्र ब्लाइंड था, तो ब्लाइंड व्यक्ति राजा नहीं बनाया जा सकता एज पर लॉ। इसलिए हालांकि बड़ा भाई था धृतराष्ट्र, लेकिन वो राजा नहीं बना। पांडु जो छोटे भाई थे फिर भी उन्हीं को राजा बनाया गया, क्योंकि उनका धृतराष्ट्र जो है अंधे थे। तो पांडु की मृत्यु होने के बाद क्राइसिस आ गया, क्योंकि पांडु के जो बच्चे थे वो छोटे थे, और छोटे बच्चे राजा नहीं बन सकते। धृतराष्ट्र अंधा है, तो दोनों में बेस्ट ऑप्शन क्या है, चलो लोग ब्लाइंड अंकल ही बैठे थे, नो मतलब, है ना। तो फिर धृतराष्ट्र को ही टाइम बीइंग के लिए राजा बनाया गया। कब तक के लिए? जब तक के लिए कि युधिष्ठिर बड़े नहीं हो जाते, दैट वाज द सिचुएशन। लेकिन जब जब धृतराष्ट्र राजा बने तो राष्ट्र को पकड़ लिया, है ना। धृतराष्ट्र का अर्थ है कि जो राष्ट्र को धृत मतलब पकड़ लिया है, राष्ट्र की राजगद्दी को जकड़ लिया है। अब फेविकॉल की तरह चिपक गया है, छोड़ना नहीं चाहता है, है ना। अब जब जब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो डरने लगा कि धृतराष्ट्र अब तो टाइम आ रहा है, उसके मन में कि मेरा बेटा दुर्योधन बन जाए तो कितना अच्छा रहेगा, मोह है ये मेरा बेटा, है ना, मोह है ये मोह आ गया, है ना। तो जब युधिष्ठिर बड़े हो गए तो समय आ गया, तो बड़े होने से पहले तो प्रयास किया कि इनको मार दिया जाए किसी तरह से, है ना। लक्षागृह में मारने का प्रयास किया गया, उनको जला के, है ना, उनको दूध में जहर मिलाकर पिलाया गया भीम को, है ना, नाना प्रकार से मतलब प्रयास किया गया। लेकिन भगवान जिसके साथ है, धर्म जिसके साथ है, तो उसकी रक्षा होती है। तो युधिष्ठिर और पांडवों की रक्षा करते रहे भगवान स्वयं, है ना। फिर जब नहीं मरे, अंत में जब जब वापस आए, जब लक्षागृह कुछ समय जंगल में रहे फिर वापस आए, तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा, है तो अधिकार के तहत पूरा राज्य मिलना चाहिए था युधिष्ठिर को, लेकिन पूरा तो नहीं मिला उनको, उन्होंने इंद्रप्रस्थ दिया। इंद्रप्रस्थ दिया तो वो लोग हस्तिनापुर से भी ज्यादा अच्छा बना दिया उसको, जंगल दिया लेकिन उसको हस्तिनापुर से भी सुंदर डिजाइन कर दिया उसको। तो दुर्योधन चल गया, जब गया जब ओपनिंग सेरेमनी था इंद्रप्रस्थ का, वहां गया दुर्योधन तो गिर गया पानी में। वो डिजाइन इतना सुंदर था, वो समझ नहीं पाएगा जहाँ पानी था वहां फर्श दिखा था, जहाँ फर्श था वहां पानी, और दुर्योधन पानी में गिर गया। और पानी में गया तो हंसने लगी द्रौपदी, ना हंसी आ गई, क्या कह सकता है कोई गिर गया मां में अचानक हंसी आ गया, है ना। इतना देखो नहीं समझ पाया आया, ये वो हंसी जो था वो अपमान रूप में नहीं आता मेरा, है ना। क्या है दैट स्टेटमेंट इज नॉट बोना फाइड, है ना। वो सीरियल में दिखाया गया था, महाभारत में ऐसा नहीं है स्टेटमेंट, है ना। तो उसने हंस दिया, दुर्योधन पहले से ही जल रहा था, एक्चुअली वो पहले से ही जल रहा था, वो तो केवल घी का काम किया, द्रौपदी का हंसी वो पहले से ही जला हुआ था। भले से मार रहा था पांडव को, मारने की तैयारी करता था, है कि नहीं? अगर द्रौपदी ने कहने के बाद से दुर्योधन बदला होता तो माना जाता कि द्रौपदी कारण नहीं थी, लेकिन दुर्योधन तो शुरू से ही मारने के पीछे पड़ा हुआ था पांडवों को, शुरू से ही प्रयास किया उसने, है ना? तो उस समय दुर्योधन जो है जब जब वहां वापस गया तो जलने लगा। तो अगर इस तरह से ये लोग बढ़ते चले गए तो हो सकता है कि हस्तिनापुर को भी बाद में जीत ले ये लोग, ये उसके मन में भाव आया। तो इसलिए उसने युधिष्ठिर के लिए बुलाया और छल से युधिष्ठिर को हराया और उनका राज्य वापस ले लिया, छल से। और युधिष्ठिर और पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास दिलाया, है ना? तो और द्रौपदी का अपमान किया गया, है ना? तो जब पांडव अज्ञातवास पूरा करके जब वापस आए तो बोले कि आप आधा राज्य दो, अब हमें राज्य दो, हमारा हक दो, या कम तो मना कर दिया, नहीं दूंगा मैं। तो फिर भगवान ने गए लास्ट में बोले कि आप कम से कम शांति का संदेश लेकर भगवान कृष्ण स्वयं गए। पहले बोलते भगवान ने गीता बोल के युद्ध कराया, नहीं, पहले भगवान ने क्या किया, शांति का संदेश लेकर गए और बोले केवल 5 गांव दे दो। कई बार कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप लोग मारकाट क्यों करते हो, इस्लाम के फॉलोअर लोग उनसे बोलते आपके गीता में तो बोला गया है मारकाट करो, गीता तो लड़ाई करने के लिए बोली गई है, जिहादी है, जिहादी है, ये भी गीता भी जिहाद के लिए बोलती है, लेकिन गीता के जिहाद में और आप जो जिहाद कर उसमें बहुत अंतर है। गीता में पहले शांति का संदेश लेकर भगवान स्वयं जाते हैं दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र की सभा में, है कि नहीं? आप शांति का संदेश लेकर कहाँ जा रहे हो, आप तो सीधे बंदूक से बात कर रहे हो, है कि नहीं? देयर इज डिफरेंस। और लास्ट में भगवान ने ऑप्शन, कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तब भगवान ने युद्ध करने के लिए कहा। पहले खुद गए, पहले रिक्वेस्ट किया कि केवल 5 गांव दे दो, छोड़ो छोड़ो आधा राज्य मस्जिद तुम ले लो, 5 गांव केवल दे दो, कम से कम क्षत्रिय है, 5 भाई हैं, क्षत्रिय का धर्म है राज्य करना ना, तो कम से कम 5 गांव दे दोगे अपना धर्म निभा पाएंगे ये लोग। तो जब दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया और उल्टे भगवान को बांधने के लिए चला, बोला कैद कर दो इसको, इसी कितना दुष्ट आदमी है। तो फिर भगवान बोले अब इसको बहुत हो गया, फिर भगवान ने कहा अब इसको कोई ऑप्शन नहीं बचा, अब युद्ध होगा, तब युद्ध किया गया, उस परिस्थिति थी, इसलिए बैकग्राउंड बताया ना। तो जब आमने सामने सेनाएं आ गई, खड़ी हो गई, भगवान कृष्ण के पास अब विश्व युद्ध हो रहा था, तो कौन देश किधर से लड़ेगा, कौन राजा किस पार्टी में जाएगा, डिसाइड होने लगा। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों गए कृष्णा के पास। पहले देखिए कितना धूर्त आदमी है, पहले कृष्णा को बांध रहा था कैद में, अब बाद में जब युद्ध का टाइम आया तो कृष्णा के पास पहुंच गया, बोला हमारे साथ लड़िए, हमारे तरफ से। तो कृष्णा बोले, दुर्योधन और अर्जुन दोनों को बोले, देखो मैं तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, मैं तो सबके लिए बराबर हूं, तो ऐसा करो, दो दो ऑप्शन है, एक तो मैं एक तरफ अकेले रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी सारी सेना है, है ना, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो आप चुन लो कौन क्या चुनना चाह रहा है। तो दुर्योधन बोला कि भगवान बोले पहले अर्जुन को मौका दिया जाएगा, है ना, पहले अर्जुन को अवसर दिया जाएगा, क्योंकि छोटा आदमी है, छोटा भाई। तो दुर्योधन को लगा कहीं अर्जुन सेना ने मांग ले, कृष्णा का क्या फायदा है लेने से, ये तो हथियार ही नहीं उठाएगा तो करेगा क्या, दूध दुहेगा। तो दुर्योधन बड़ा चिंतित था कहीं अर्जुन सेना ना मांग ले, है ना? तो अर्जुन को मौका दे, अर्जुन ने बोला मैं तो कृष्ण को ही चाहता हूँ, है ना? तो दुर्योधन बड़ा खुश था, बोला ये पागल कहीं का है, देखो कितना मूर्ख है ये पांडव लोग, है ना? सेंटिमेंटल है। अरे जब जब हथियार नहीं समझ नहीं आ रही क्या कितने मूर्ख हो सकते हैं क्या मतलब लोग ये हथियार ही नहीं उठाए आजकल क्या कह रहे तो कृष्ण भगवान कृष्ण बोले दुर्योधन से तो क्या ठीक है अर्जुन तो मेरे को मान रहा है ना बोले अर्जुन को बोले भगवान एक बार आप और सोच लो है ना है ना एक बार और सोच लो आप मैं हथियार नहीं उठाऊंगा अर्जुन बोले नहीं कोई बात नहीं आप हथियार उठाओ या मत उठाओ आप बस हमारे साथ रहो यही बोले तो दुर्योधन को बोले आप बताइए अर्जुन तो मेरे को मान लिया है अब क्या किया जाए तो दुर्योधन बोला क्या करे वासुदेव मैं तो आप ही को लेना चाहता था लेकिन चलिए अब जो भी मिल गया अनुज भाई है छोटा अब वो आपको मांग ही लिया वैसे तो मेरे को आपसे प्रेम ही रहा है ना लेकिन चलिए मैं सेना से ही संतोष कर लूंगा लेकिन मन ही मन सोच रहा है कितना मूर्ख आदमी है ये अर्जुन पांडव सेंटिमेंटल उसी तरह से जब कोई भक्त जाए सब कुछ छोड़ देता है और केवल भगवान की भक्ति करता है केवल कृष्ण को अपने साथ रखता है लोग सोचते देखो सेंटिमेंटल हरे कृष्ण वाले इतने मूर्ख सब छोड़ के देखो कृष्णा कृष्णा कर रखा है ना लोग समझ नहीं पाते है ना इस बात को कि जिसके पास भगवान है उसके पास सब कुछ है क्यों क्योंकि सब कुछ भगवान का है और भगवान मेरे हैं तो उस दृष्टि से सब कुछ किसका हुआ मेरा हुआ ना इस वक्त तो बेस्ट है भगवान को अपने साथ रखिए है कि नहीं भगवान को अपने साथ रखेंगे तो भगवान का संसार अपने साथ स्वयं अपने आपके साथ रहेगा है कि नहीं तो इस तरह से युद्ध शुरू हुआ सामने आमने सामने लड़ाई दोनों सेनाएं खड़ी थी अब लड़ाई शुरू होने वाला है सुबह का समय है ठंडी का मौसम है कुरुक्षेत्र में गर्मी है ना गर्मा गर्मी चल रही है दोनों की तरफ है ना दिसंबर में कितनी ठंडी रहती है नॉर्थ इंडिया में लेकिन तो उस समय में युद्ध हुआ महाभारत का और तब जो है लड़ाई शुरू होने वाली है उस समय में अर्जुन कहा बहुत गुस्से में था अर्जुन है ना पहले बहुत क्रोध में था कहा हे हे केशव मैं चाहता हूँ आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए कृष्ण बोले क्यों मैं देखना चाहता हूँ कि कौन मूर्ख लोग हैं जो दुर्योधन का साथ देने आए हैं जिनको मेरे को मारना है हाथ में धनुष लेके ताव से सूर्यागम गया है मैं मारूंगा जल्दी से देख दिखाइए कौन कौन आया है ताकि सबको इसमें कौन बाण चलाना है पहले से प्लान कर लूंगा है ना तो कृष्णा बोले ठीक है चलो रथ को लेके चले और ले जाके दोनों सेनाओं को बीच बोले देखो ध्यान से देखो कौन कौन खड़े हैं है ना देखो तुम्हारे तुम्हारे पितामह हैं चाचा हैं ससुर हैं भाई है सब रिलेटिव है ना है ना भगवान बोले रिलेटिव है देखो तुम्हारे इनको मारना है ना तो जब देखा दुर्योधन ने अरे बाप रे द्रोणाचार्य को देखा रे जिन्होंने मेरे को तीर चलाना सिखा उन्हीं को मारूंगा भीष्म पितामह जो मुझे गोद में लेकर खाना खिलाते थे इन्हीं भी बाण चलाऊंगा हैं जिनके साथ खेलता था खाता था जिनकी गोद में बैठता था उन्हीं के ऊपर बाण चलाऊंगा हाथ कांपने लगे मुंह सूखने लगा रोंगटे खड़े हो गए ये सब साइन है डिप्रेशन का साइन है डिप्रेशन में जा रहा है ना अर्जुन जो है वो हाथ से धनुष में छोटे गिर गया कांपने लगा हाँ परिस्थिति को देखकर और अर्जुन बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा क्या अपने ही लोगों को मार कर क्या फायदा संसार का सुख मिल भी जाए तो अपने ही लोग मर जाएंगे क्या होगा उससे सुख को कौन भोगेगा अगर मिल भी गया तो तो अर्जुन जो है वो इस प्रकार से रथ पे बैठ गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो इस परिस्थिति में भगवान ने उसको फिर कहा कि आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे कृष्ण से पूछा युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तो ऐसा तो नहीं था ना कि युद्ध अर्जुन लाइफ में पहली बार युद्ध लड़ रहा है ऐसा तो नहीं था ना, पहले भी जो लड़ा था कई लोगों को मार चुका है, पहले तो हाथ नहीं कांप रहा था, अभी क्यों हाथ कांप रहा है, हैं? अभी क्यों कांप रहा है, हैं? रिलेटिव के लिए धर्म बदल जाएगा, हैं? एक मिनट है जो पूछ रहा हूँ वो है अपने लोगों के लिए नियम दूसरा है, अपना परिवार हो तो आप कानून कानून को चेंज कर देंगे उसके लिए, दिस इज करप्शन, दिस इज करप्शन एंड भगवद्गीता इज अ टूल रिमूव करप्शन, समझ रहे बात? मान लिया जज और आपके बेटे ने मर्डर किया है और कोर्ट में आ गया, आपको डिसीजन लेना है इसको फांसी की सजा देनी है, अब क्या करोगे? नियम को बदल के रिहा कर देंगे आप उसको? नहीं, अपना हो या कोई कोई हो, अगर आतताई है अपराधी है उसको सजा देना है, हाथ नहीं कांपना चाहिए एक राजा का, है कि नहीं? लेकिन अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं क्यों? धर्म के लिए अपना भी व्यक्ति भी कितना भी क्रोध होगा, धर्म के रास्ते में बाधा है उसको हमें सजा देनी चाहिए, ये सब नहीं, धर्म की रक्षा होनी चाहिए, न्याय की रक्षा होनी चाहिए, और इसी सिद्धांत को भगवत गीता कहती है व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए धर्म के मार्ग से, चाहे अपना हो या पराया, दोनों सबके लिए एक समान न्याय है। तो भगवान बोले अरे मूर्ख, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पंडित की तरह, तीर चलाओ क्यों नहीं मार रहे, हाथ क्यों कांप रहे तुम्हारे, मतलब अपने लोगों कैसे मार रहे? तब भगवान ने आत्मा का ज्ञान दिया कि देखो अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम मरेंगे, लेकिन इन्होंने क्राइम मर्डर किया है, तुम अपने बेटे को नहीं सजा दोगे तो तुमको हटा दिया जाएगा, केस किसी और जज के पास जाएगा और वो दंड देगा, मरना तो है ही इसको, ये सब क्योंकि क्राइम किया है, इसलिए भगवान बोले कि मैंने तो इसको इनको पहले ही मार चुका हूं, जिस दिन इन्होंने क्राइम किया अपराध किया पाप किया उसी दिन मैंने इन्हें मार दिया था, बस तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्रेडिट लेना चाहते हो कि नहीं, धर्म की रक्षा करने का, मरना तो इन्हें है, ये गीता बताती है, और ये जहां तक रही बात मरने की तो इनका शरीर केवल नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी, है ना, दो शरीर नष्ट होगा केवल, है ना, आत्मा नष्ट नहीं होगी, इसलिए आत्मा का ज्ञान बताया भगवान ने कि आत्मा न तो मरती है न जन्म होता है, आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होगा, और व्यक्ति जिस शरीर से पाप किया है उस शरीर को नष्ट हो जाना चाहिए, उसी में भलाई है, ताकि इसको नया शरीर मिले जिसे एक नया जीवन का शुरुआत करे व्यक्ति। तो भगवान ने इस तरह से गीता का उपदेश दिया ताकि अर्जुन अपने कर्तव्य को करने की शक्ति प्राप्त कर सका, कमजोर हो रहा था, कमजोर हो रहा था, लेकिन जब गीता सुना तो मोह नष्ट हो गया, इसी को कहते हैं मोह, मोह मतलब मैं और मेरा, मैं और मेरा, जो मेरा है उसके कारण व्यक्ति इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप मेरे हो, मेरा मेरा चाचा के बेटे का भाई, चाचा का बेटा वो है आईएएस ऑफिसर, उससे बोल के काम करवा दूंगा, दिस इज करप्शन, मेरा मेरा, इसको क्या कहते हैं मोह, और आइए सब सर है वो भी बोलते हाँ हाँ करा दूंगा आपके लिए तो चलेगा आप अपने हैं हाँ तो ये क्या है ये दिस इज रॉन्ग व्यक्ति को अपना कर्तव्य को करना चाहिए धर्म का पालन करना चाहिए चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो उसको दंड देना है देना चाहिए क्षत्रिय का यह धर्म है। तो इसी मोह को हटाने के लिए जो मोह व्यक्ति को कमजोर करता है कर्तव्य पथ पर मोह व्यक्ति को कर्तव्य पथ पर कमजोर करता है इसी मोह को नष्ट करने के लिए भगवान ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया अर्जुन को। तो अर्जुन को तो इस प्रकार से मोह था हमारा मोह दूसरे टाइप का है सब व्यक्ति हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में मोह में फंसा हुआ है जैसा कि शुरू में इन्होंने बताया है ना कि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से मोह में फंसा हुआ है। अर्जुन का मोह दूसरे टाइप का था हमारा मोह दूसरे टाइप का है लेकिन गीता में भगवान ने इस तरह से गीता बोली है कि अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और हमारा भी हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे सबके लिए सुटेबल है ये गीता तो हमें पढ़ना चाहिए हमें अर्जुन राजा था उसके लिए गीता है ना मेरे मैं तो राजा नहीं नहीं मेरे को तो लड़ाई थोड़े लड़ना है नहीं जिसके अंदर मोह है उसको गीता पढ़नी चाहिए उसका मोह नष्ट होगा मोह नष्ट होगा तो उसका कर्तव्य बोध स्मृति वापस आएगी फिर वो अपने जीवन में कर्तव्य कर पाएगा अपने जीवन के कर्तव्यों को तत्परता से उत्साह पूर्वक कर पाएगा नहीं तो कमजोर हो जाएगा डिप्रेशन में चला जाएगा अर्जुन की तरह है ना सुसाइड कर लेगा तो यही पे विराम दूंगा मैं आज और नेक्स्ट टाइम गो फॉरवर्ड हरे कृष्ण एनी क्वेश्चन हाँ हाँ
जब युद्ध हो रहा था बाद में तो इसका मतलब यह है कि सही काम करने के लिए कुछ गड़बड़ भी करनी पड़े तो कर देनी चाहिए रूल अगर ब्रेक करना चाहिए नहीं भी जैसे कि रूल उसमें ब्रेक होने लगे तो रात में युद्ध होने लगा था तो
भगवान जो करते हैं वही सही है ना भगवान के लिए कोई रूल नहीं है
कई बार हमें
भारत का कानून राष्ट्रपति को अप्लाई नहीं होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या बियॉन्ड लॉ है ना तो मैंने कहा था कि जो नियम बनाता है ही बियॉन्ड लॉ और नियम का पालन करने के लिए लॉ में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है जैसे संविधान संशोधन होता है ना होता है कि नहीं तो परिस्थिति के अनुसार उसको चेंज किया जाता है संविधान को है कि नहीं जब देखते हैं कि लोग संविधान को यूज करके ही गलत काम कर रहे हैं तो उसको संशोधन करके उसमें नए क्लॉज डाल दिए जाते ताकि उसको मिसयूज न किया जा सके। तो सूर्य 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 जो है वो उनको यूज करके है ना जगह गलत काम कर रहा है ना समय को इस्तेमाल कर रहा है कि थोड़ा देर में शाम हो जाएगा अर्जुन मर जाएंगे है ना तो भगवान ने बोला ठीक है बेटा तेरा दिमाग तो यहाँ तक चलता है लेकिन मेरा प्रॉब्लम मेरा वही है कि मेरा थोड़ा ज्यादा है तुमसे है ना यस यस
प्रभु धर्म क्या है क्योंकि पर्सन टू पर्सन इसकी परिभाषा बदलती रही है जिस साइड मतलब अर्जुन अपने धर्म से विचलित हो गया था उसका धर्म था युद्ध करना ब्राह्मण कुल में जन्म जो ले ले उनका धर्म दूसरा आया था प्रभु की भक्ति करना जो शूद्र जातियों में है उनका धर्म है तो बेसिकली धर्म सबके लिए अलग अलग है या
फिर धर्म सबका यही है ना धर्म सभी पुरुषां परो धर्मो यथा भक्ति रथ चले अहति अप्रत्यता आत्मा सुप्रसीदति है ना उन उन व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है परम भगवान की भक्ति और उनकी सेवा उनसे प्रेम करना है ना जैसे पानी का धर्म क्या है लिक्विडिटी है ना और चीनी का धर्म क्या है मिठास है ना सॉल्ट का धर्म क्या है नमकीन होना है ना चाहे इंडियन सॉल्ट हो चाहे अमेरिकन सॉल्ट चाहे हिंदू सॉल्ट हो चाहे मुस्लिम वो क्या होगा नमकीन ही होगा है कि नहीं तो धर्म कभी बदल नहीं सकता जो धर्म है वो कभी बदलता नहीं है एक्चुअल डेफिनेशन धर्म का जो है डिक्शनरी में वो यही है कि जो चीज व्यक्ति का स्वभाव के अंदर बैठा वो कभी बदल नहीं सक रहा है, तो वही धर्म है। तो जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म बताते हैं कि जीव का धर्म है प्रेम करना और सेवा करना। इसीलिए आप देखो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब कहीं ना कहीं प्रेम करते हैं, किसी न किसी की सेवा करते हैं। ये भावना सबके अंदर है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उनके अंदर भी प्रेम और सेवा की भावना है। वो तो धर्म करते हैं, धर्म नहीं जानते, लेकिन उनके अंदर इतना पता है कि मुझे थोड़ा सेवा करना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, जब तक बड़े नहीं हो जाते है। तो ये प्रेम करना और सेवा करना, ये दो धर्म, ये धर्म जो है यही वास्तविक धर्म है। और भगवान से प्रेम करना और भगवान से सेवा करना, ये परम धर्म है। अगर भगवान से नहीं कर रहा है तो किसी और से कर रहा है तो भी धर्म है, लेकिन परम धर्म नहीं है। परम धर्म क्या है? जब व्यक्ति जीव भगवान से प्रेम करता है, भगवान से सेवा करता है, तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। लेकिन कोई भगवान से न करके देश से कर रहा है, देश भगवान की, तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है अगर कोई सीधे भगवान से करे तो दैट इज हाईएस्ट, है ना। कोई परिवार से कर रहा है, परिवार से प्रेम करता है, और कोई देश से प्रेम करता है, तो दोनों में कौन ज्यादा हाईएस्ट माना जाएगा? देश वाला बिगर फैमिली, ही इज सैक्रिफाइसिंग हिमसेल्फ फॉर ग्रेटर काउज, फॉर ग्रेटर, फॉर द बेनिफिट ऑफ मोर नंबर ऑफ पीपल, है ना। कोई देश के लिए जान देता है, कोई परिवार के लिए जान देता है, दोनों में किसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है? देश वालों को। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा निस्वार्थ है, ज्यादा निस्वार्थ है, है ना। उसमें उसका त्याग ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, है ना। तो जो ईश्वर को प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है। हो सकता है कोई इंडिया से प्रेम करे तो पाकिस्तान से ना करे, लेकिन जो ईश्वर से प्रेम करता है वो सबसे प्रेम करता है, क्योंकि सबको ईश्वर का संतान मानता है। इसलिए उस दृष्टि से सब, अगर जो भगवान से प्रेम करेगा तो उनकी संतान से भी प्रेम जरूर करेगा। इफ यू लव मी यू लव माई डॉग ऑल्सो, इज इट नॉट? सो इफ समबडी लव्स गॉड ही हैज टू लव गॉड्स चिल्ड्रन ऑल्सो। If somebody says, I love God, but he is killing God's children, then actually he doesn't love God. So simple. Again, so dharma, jis dharma mein daya na ho, wo vastav mein dharma hai hi nahi. Dharma ka arth hai usme daya hona chahiye, dusron ke prati daya. Jis dharma mein nirshansata hai, nirdayata hai, wo dharma ho hi nahi sakta. तो पाखंड है, ढोंग है। तो इस तरह से समझना है इसको, है ना।
ये गीता का उपदेश कब तक चला था, मतलब कितने साल तक?
गीता का उपदेश 1.5 घंटे में खत्म कर दिया भगवान ने। अर्जुन को ज्यादा टाइम कहाँ था, लड़ाई होने वाला था, लोग खड़े थे आमने सामने, आमने सामने खड़े थे, वेट करते क्या कर रहे थे। तो एक घंटा का मैं गीता 700 श्लोक गीता का बोला भगवान ने, अर्जुन समझ में एक घंटे लिख के बताया गया, और उसी दिन युद्ध शुरू हो गया था एक घंटे बाद। नहीं समय नहीं, एक्चुअली एक घंटा ही लगेगा। अगर आप आपको पूरा याद कर लो पढ़ो तो 1.5 घंटे में आप पढ़ जाओगे पूरा गीता का। अर्जुन का मेमोरी बहुत तेज है ना, आज समझता चला गया। पहले लोग लोग शार्प मेमोरी होते थे।
अब प्रभु जी को नॉनवेज का जो मैं क्वेश्चन किया था आपसे, कर्ड का, और उसका साइंटिफिकली आप थोड़ा समझा सके तो, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड हैं, दे आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड दे आर मुस्लिम ऑल्सो।
क्या
मेरे कुछ फ्रेंड हैं वो मुस्लिम भी हैं?
नहीं, मैं बताया ना कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो सीन है, है ना, लेकिन उतना सीन अलाउड किया गया है भगवान के द्वारा, है ना। जैसे कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में 5 रुपए का बेईमानी सरकार अलाउड करती है, इतना चीटिंग आप।
दैट इज अ लॉजिकल,
तो ये भी लॉजिकल है ना कि जी
साइंटिफिकली
कैसे लॉजिकल है, कैसे लॉजिकल है, कैसे लॉजिकल है, बेईमानी है ही, 5 रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हो, बेईमानी नहीं है?
बेईमानी तो है, एक रुपए करो या एक करोड़ का करो।
हाँ तो बेमानी है, लेकिन सरकार ने अलाउ किया है ना, 5 रुपए तक आप करो करो, नहीं तो बीच बीच प्रॉफिट कोई नहीं हुआ तो लाइफ कैसे चलेगा व्यक्ति का, सर्वाइवल के लिए जो प्रॉफिट होगा तभी तो खाएगा बेचारा, आप समझ रहे हो। तो सर्वाइवल के लिए सरकार जानती है कि व्यक्ति को सर्वाइव करना है तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कमाएगा तभी सर्वाइव करेगा, इसलिए इतना प्रॉफिट अलाउ किया जाता है। उसी तरह से जीव जो है कुछ नहीं खाएगा तो मर जाएगा, इसलिए दही अलाउ कर दिया गया, दही में थोड़ा जीव है उसको मार सकते हैं,
टोटली जीव है, अंदर माइक्रोस्कोप
हाँ
टोटली बैक्टीरिया
है, बैक्टीरिया है वो है बैक्टीरिया, लेकिन वो बैक्टीरिया को अलाउ किया गया मारना, क्योंकि कुछ तो खाना है ना, खाना पड़ेगा, हर चीज में बैक्टीरिया है, हर चीज में जीव है, टमाटर में भी जीव है, अब माइक्रोस्कोप से देखो तो उसमें भी जीव है, आप सांस ले रहे हैं सांस में कितने जीव जीव जा रहे हैं, अंदर बाहर आ रहे हैं, चलते हैं आप कितने जीव आपके पैरों के नीचे पे चल रहे हैं, पाप के बिना व्यक्ति नहीं रह सकता, लेकिन मिनिमम क्या मिनिमम सीन करना चाहिए कहने का अर्थ है।
संशोधन का आवश्यकता है क्या, इफ वी आर गॉट द साइंस ही गॉट द आईज ऑफ द साइंस दैट लाइक गॉड इज अ
नो 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 नो
दैट टाइम मे बी
नो 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 यू आर रॉन्ग, यू डोंट हैव आईज इवन टुडे मोर देन व्हाट वेद व्यास है ना, वेद व्यास नहीं, दे अंडरस्टैंड दैट देयर इज लाइफ इन गॉड, इसलिए जीव जीव से जीवन लिखा हुआ है शास्त्र में, एक जीव दूसरे जीव का जीवन है लिखा हुआ है शास्त्र में, यू आर नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग न्यू, वी शुड नॉट बी एन इल्यूजन, शास्त्र दे नो एवरीथिंग, शास्त्र में सब पता है, वेद व्यास जी की भगवान है, उन्होंने बनाया है सृष्टि को, उनको नहीं पता वही लिख रहे हैं, है ना, स्मृति मतलब उसी तत्व को अपने शब्दों में संत लोग फिर से लिख रहे हैं अपने शब्द में, तो उसको कहते हैं स्मृति, अपने अनुभव को शेयर करते हैं कि मैंने कैसे रियलाइज किया स्मृति को, स्मृति में जो तत्व है उसको रियलाइज करते हैं फिर लिख रहे हैं न, तो क्या हो गया स्मृति है,
गीता भी जैसे व्यासाजी लिखी थी तो उन्होंने जैसे सुना था,
उन्होंने शब्दों को अपने शब्द में नहीं लिखा ना, वो जो शब्द भगवान ने बोले थे वही शब्द लिखे,
चेंज करके नहीं लिखा,
चेंज नहीं लिखा है वही वही लिखा है,
तो वो श्रुति ऐसे है,
हाँ श्रुति की,
तो वो जी एक और था इसके अंदर
जहाँ भगवान साक्षात बोल रहे हैं वो श्रुति की,
इसमें ये कहना पता चलना चाहिए कि अब नहीं अप्लाई करनी चाहिए, अगर किसी लोगों को समझा दिया है कि नहीं अब अगर नहीं मान रहा है किस डिग्री तक जाना चाहिए, कितनी बार आप समझाना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम,
लड़ाई तो नहीं करनी चाहिए, उसको पुलिस के साथ डील करना चाहिए, देश के लिए
पुलिस भी आजकल पूरी तरह से कि अब जैसे आपने बताया हाईएस
ऑफिसर पुलिस बनी है, पुलिस कौन बन रहा है, हम ही लोग जैसे जो लोग बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप ही बताओ,
मैं तो जैसे यहाँ आ रहा था एक एक लिमिट हो गया, उस लिमिट के बाद जाकर के फिर एजुकेशन उस लेवल की नहीं ली मैंने, तो मैं पुलिस वाला नहीं बन सकता हूँ, अभी जज नहीं बन सकता हूँ, तो जिस लेवल में मैं कर सकता हूँ इन क्वेश्चन के आंसर देने की वजह से ही मैं ये प्रैक्टिकल नॉलेज लेने आया हूँ, तक पता चले और मैं भी एक ऐसी डेजिग्नेटेड पोस्ट पे आऊँ ताकि मैं ये सही काम कर सकता हूँ,
मतलब कहने का अर्थ है कि आप हथियार या खुद उठाना चाहते हो, कानून अपने हाथ में,
अदर भी अगर नहीं मिलता है किसी समझाने का तो बहुत बड़ा पैसा है, जो
ऑप्शन क्या है, जो भी ऑप्शन है आप वही यूज करोगे ना,
तो एक लेवल
है मरता क्या नहीं करता, एक कहावत है कि मरता क्या नहीं करता, वैसे भी वो मर ही रहा है क्यों ना मार के मरे, तो ऐसी स्थिति है तो सेल्फ प्रिजर्वेशन है तो फर्स्ट प्रिंसिपल करने का, अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे की जान अगर ले ली जाए तो कानून भी उसको रिहा कर देता है ना, इस और मतलब तो ये तो कानून में भी लिखा है, अगर आपके ऊपर आक्रमण कोई कर रहा है और ऐसा लगता है कि आपको मार देगा वो, तो आप उसको मार दो और बाद में प्रूफ कर दो कोर्ट में जाकर कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा था, तो अपनी सुरक्षा के लिए मैंने मारा,
जैसे अगर प्रभु जी कोई भी अननेसेसरी कोई हमें ही ब्लेम कर रहा है, उल्टा हम सही कर रहे हैं, फिर भी रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं,
ब्लेम तो कर रहा है तो सह लेना
सही कोई जो
प्रूफ कीजिए कि आप गलत नहीं है, नहीं करते तो प्रूफ कीजिए, प्रूफ दीजिए अपना कि मैं नहीं हूँ गलत, है कि नहीं? वो बोल रहा था आप गलत, आप ही बोले मैं नहीं हूँ गलत, सचिन लेकिन ब्लेम कर रहा है तो उसका स्वभाव है ब्लेम करना,
नहीं मतलब कुछ डिस्प्यूट है तो
पर्सनली डिस्कस कर लेंगे,
ठीक है,
क्योंकि आपके साथ ही केस हो रहा है, सबके साथ नहीं हो रहा है ना, तो प्रिंसिपल मैंने बता दिया आपको, प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई लग रहा है कि आपको जान से मार देगा तो उसमें आप उसको मार रहा हो, लेकिन बाद में प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं नहीं मार रहा था, उसको मारा इसलिए मारना पड़ा, नहीं तो वो मेरे को मार रहा था ना, बदमाश वो है मैं नहीं।
अब मुझे फ्रेंड है एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आपने गर्भावस्था वाला बताया वो कि जैसे उन्होंने देखा और उनको तो प्राप्ति हो गई, तो अभी भी लोग डिस्कस करते हैं कि वो बिना गर्भावस्था के पुत्र के प्राप्ति कैसे हो जाती है, कि इमीडिएट पुत्र प्राप्त हो जाता था, ये गर्भावस्था
बहुत कैसे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे कि हम लोग लोग अपनी दुनिया में ही मस्त रहते हैं, सोचते यही दुनिया इतनी सीमित है कि नहीं, ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो है ना चमत्कार करते हैं, आप देखो आज एक व्यक्ति है जिसके ऊपर बिजली का प्रभाव ही नहीं पड़ता, उसके शरीर से बिजली पास होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं, तो आप लोग ये कैसे हो सकता है किसी को पूछ लीजिए, साइंस कैन नॉट एक्सेप्ट लेते, साइंटिफिक लॉज इलेक्ट्रिकल लॉज आर नॉट वर्किंग देयर, इज बियॉन्ड इलेक्ट्रिकल लॉज, ऐसे ऐसे हो सकता है,
अब्बा जी के भी पुत्र हुए थे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था देते ही उन्हें,
पहले तो ब्रह्मा आप देखो ब्रह्मा जी सारी सृष्टि अकेले निकाल दी बिना पत्नी के पकड़ कर दी, हाँ लोग कैसे पत्नी तो थी नहीं, चार कुमार को मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, अपने मन से पकड़ कर दिया ब्रह्मा जी ने, सारे बड़ी श्रीमद भागवत सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने अकेले किया बिना पत्नी के, पहले पत्नी और पुरुष स्त्री और पुरुष से संतान उत्पत्ति का जो है वो बाद में आया ये सिस्टम, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को जब जन्म दिया ब्रह्मा ने तब से ये प्रोसेस एग्जिस्टेंस में आया, उससे पहले जितनी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने सब अकेले किया, तो ये शक्ति है क्या, शक्तियां हैं ऐसे इससे संभव है, तो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा, पर्सनल जब भी क्वेश्चन होगा पर्सनली पूछ सकते हैं, सबका समय है ना, सबको वेट करना पड़ता
है, हरे कृष्णा, तो हम प्रभु जी का बहुत ही धन्यवाद करेंगे क्योंकि देखिए तो अपना कितना इंपॉर्टेंट है काम कर और हम सबको गाइड किया, ठीक है, हम दोनों
हाथ उठाकर चैंटिंग करेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, और हम अपना एटीट्यूड क्लास बहुत अच्छा रखेंगे ताकि प्रभु जी को बहुत अच्छा लगे और प्रभु जी हमें बार बार